ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون انسان اپنے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین کا محتاج ہے, چاہے وہ معاملہ دنیوی ہو یا دینی ہو, کھانے پینے لباس بیماری شفا, ہر اعتبار سے انسان اپنی ضروریات اور اپنے مسائل کے حل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اس کی پیدائش محتاجی کے ساتھ ہے اور اس کا آخری وقت بھی محتاجی کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے, وخلق الانسان ضعیفا, کہ انسان کو ہم نے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. زندگی میں مختلف مسائل انسان پر آتے رہتے ہیں, کبھی بیماری آتی ہے, کبھی معاشی مسائل آتے ہیں, کبھی سماجی اعتبار سے سماجی مسائل آتے ہیں. ہر انسان پر کبھی اپنی ذات کے اعتبار سے, کبھی بیوی بچوں کے اعتبار سے, کبھی رشتہ داروں کے اعتبار سے مسائل آتے رہتے ہیں, اور ان مسائل کا حل انسان اکیلا خود نہیں کر سکتا ہے, وہ الٹیمیٹ نہیں ہے. جو چاہے کرے, اس کے پاس سب کچھ نہیں ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو, اس کی قدرت میں سب کچھ نہیں ہے کہ اب اس کو تعاون کی مدد کی ضرورت نہ ہو. اس کو ضرورت ہے, وہ محتاج ہے, وہ دنیوی اعتبار سے بھی محتاج ہے اور دینی اعتبار سے بھی محتاج ہے, وہ ہدایت کا محتاج ہے, رہبری کا محتاج ہے, وہ اللہ کی طرف سے فہم کا محتاج ہے, دین کے سمجھنے میں وہ اللہ کا محتاج ہے. اللہ جب تک کہ توفیق نہ دے اس کو نہیں سمجھے گا, اور اللہ کی مدد کا محتاج ہے اس اعتبار سے کہ وہ دین پر جمے. اسی لیے ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر جمائے رکھ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما. محتاج ہے, ہو سب سمجھا آپ ٹھیک, میں میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں, نہیں. نبی بھی ہے, اس کو پانچ نمازوں میں ہر نماز میں مانگنا پڑے گا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر جمائے رکھ. وہ اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ ہدایت کا محتاج ہے, وہ عمل کے اعتبار سے محتاج ہے. اسی لیے جب اذان ہوتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, تو جواب میں ہم کو سکھایا گیا ہے ہم کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ کوئی زور نہیں ہے, کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی طاقت اپنی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اللہ توفیق دے گا تو ہی انسان کر سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے. تو انسان ہر اعتبار سے اللہ کا محتاج ہے، چھوٹا بڑا، مرد و عورت، امیر و غریب، ہر ملک کا آدمی، دنیا کے جتنے دور ہیں ان تمام ادوار میں انسان ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا محتاج رہا ہے اور رہے گا، قیامت کے دن بھی. اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم اللہ کے آگے فقراء ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. والله هو الغنی الحمید، یہ اللہ ہے جو غنی ہے، حمید ہے، حمد کے لائق ہے. تو بندے کے حصے میں، بندے کی جھولی میں محتاجی کے سوا کچھ نہیں ہے. اس کی عقل میں چاہے جو بات ہو، لیکن واقعی اس کی حیثیت محتاج ہی کی ہے. یہ ہو سکتا ہے وہ اپنی محتاجی کو بھول جائے، بہت کچھ بھولتا ہے، اپنی اصل حیثیت جو اللہ کے مقابلے میں اس کی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھول جائے، لیکن اللہ نہیں بھولتا ہے. اور اکثر اوقات زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسے معاملات اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کے ساتھ پیش کرتا ہے، کہ واقعی اس کو اپنی حیثیت یاد آتی ہے. اسی لیے مشرکین جب دریا میں، سمندر میں، ناؤ میں جاتے، کشتیوں میں جاتے اور طوفان آتا تو سارے معبودوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی سوئمنگ کیپیبلٹیز کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی ایکسپرٹیز کو بھول جاتے ہیں، اور سب کے سب ایک اللہ کو پکارتے، مخلصین لہ الدین، اپنے پورے عمل کو، اپنی دعا کو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. وہ بھی شدائد میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جب واقعی پھنس جاتے تو جن کو وہ واقعی بڑا سمجھتے تھے اپنے سے، ان کو اس وقت میں معلوم ہو جاتا تھا، یاد آ جاتا تھا، سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اللہ سے یہ چھوٹے ہیں، تو آپ بڑے کو پکارو. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ اللہ کو پکارتے تھے. تو بعض اوقات انسان اپنی اصل حیثیت کو بھول جاتا ہے اور رسم و رواج کی وجہ سے اس کے ذہن پر پردے پڑ جاتے ہیں، غلط تعلیم اس کی فطرت پر ایسے چھا جاتی ہے جیسے کوئی نیند میں اوڑھ کے سو جاتا ہے. ایک تو اس کے اوپر چادر اور اندر سے غفلت کی چادر، دو چادر، اور اس کے اوپر رات کی اندھیرے کی چادر. تو ایک آدمی بعض اوقات بھول جاتا ہے، مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اس اعتبار سے مصیبتیں بھی خیر ہوتی ہیں کہ وہ کم سے کم ایک بندے کو اپنی محتاجی اور اللہ کے مدد کرنے والے ہونے کا احساس پیدا کرتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ یہ مصیبت اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع اور اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنتی ہے. لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی جہالت اس کے لیے اس چیز میں بھی معنی ہو جاتی ہے. غلط تعلیم، غلط رہبری انسان کے لیے ایسے حالات میں بھی اللہ سے جڑنے کی بجائے اللہ کے بندوں سے جڑ کر مخلوق سے مانگنے والا اس کو بناتی ہے، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے مصیبت جب آتی ہے تو کہاں جاتا ہے؟ پھر بزرگوں کی درگاہوں پر اور اللہ کے بندوں پر جو خود محتاج ہیں اللہ کے، وہاں جا کر ماتھا ٹیکتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، और उनसे मांगता है और चाहता है कि उसके मसाइल हल हों। बाज औकात मसाइल हल भी हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो करते हैं, क्योंकि अगर आदमी चाहे बुजुर्गों से मांगे या बुतों से मांगे, उसको देने वाला अल्लाह ही है। क्योंकि कुरान की नस है, वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो अल्लाह की तरफ से है। तो मालूम हुआ कि देने वाला तो अल्लाह ही होता है, लेकिन बंदा उसकी निस्बत फिर उन लोगों से कर देता है जो उसके गुमान में देने वाले हैं, उसको लगता है कि इन्होंने दिया है। आप देखेंगे दुनिया में कोई ईसाई है तो वह अपने माबूद से मांग रहा है, कोई मुशरिक है तो वह अपने माबूद से मांग रहा है, और कोई अपने ऊपर भरोसा करके कोशिश करके हासिल कर रहा है, और हर एक समझता है कि मुझको फुला ने दिया, मुझको फुला ने दिया, मुझको फुला ने दिया। लेकिन हकीकी एतबार से देने वाला कौन है? अल्लाह ही है। तो देता अल्लाह है, लेकिन बंदा उसकी निस्बत किसी और की तरफ करके नाशुक्री पर नाशुक्री में इजाफा करने लग जाता है। यही बात है जो इबलीस ने कही थी, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तो उनमें से अक्सरों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। शुक्र वो सिफत है कि एक इंसान अल्लाह की नेमत का एतराब करे और नेमत पर अल्लाह की हमद करे और उस नेमत में अल्लाह की मर्जी की खिलाफ वर्जी न करे, ये शुक्र है। तो बहरहाल देने वाला अल्लाह है, चाहे बंदा किसी की भी तरफ निस्बत करे, असल देने वाला अल्लाह है। लेकिन क्या अल्लाह से लेने के लिए वसीले हैं? क्या अल्लाह डायरेक्ट नहीं देता? क्या अल्लाह से लेना हो, मसाइल का हल करवाना हो, तो किसी के जरिए ही जाना पड़ता है तब जाके मसाइल हल होते हैं? या फिर अल्लाह ताला से बराह रास भी बंदा मांगे, डायरेक्ट भी अल्लाह मांगे, बंदा मांगे अल्लाह से, तो मसाइल हल होते हैं या नहीं होते हैं? आज की इस गुफ्तगू में हम इसी चीज को देखेंगे, इसी पर हम गौर करने की कोशिश करेंगे कि क्या दीन में वसीले वसीले की कोई हैसियत है, क्या वसीला सही है और कौन सा वसीला सही नहीं है, और वसीले की शरी हैसियत क्या है, उसकी सूरत क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वबतगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वबतगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ अल्लाह की तरफ वसीला इख्तियार करो, वजाहिदू फी सबीलिही, और उसकी राह में जिहाद करो, उसकी राह में मुजाहदा करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम कामयाब हो। ये सूरह अल-माईदा की आयत नंबर 35 है। इस आयत से बहुत सारे लोगों ने दलील ली कि बुजुर्गान दीन की कब्र पर जाना और उनके तुफैल उनके वसीले से मांगना जरूरी है, ये दीन है, और उनसे भी मांगना इसी के जिम्मे में आ रहा है। तो वाकई ये आयत किस बारे में है, इसका क्या मतलब है, और वसीला दीन में है कि नहीं है? बाद लोग कम इल्मी की वजह से कहते हैं वसीला है ही नहीं दीन में। हम कहते हैं वसीला फर्ज है। बाद लोग सोचेंगे सही जगह है कि गलत जगह है, ये कोई नई तहकीक तो नहीं है। वसीला फर्ज है, वसीला मुस्तहब है, वसीला हराम भी है। उसकी नौयत कैसी है, उस एतबार से उस पर हुक्म लगेगा। क्यों भाई, दुआ क्या है? दुआ अल्लाह से मांगना दीन है, और बुतों से मांगना दीन है, शिर्क है। तो एक अमल की निस्बत अगर शरीयत के खिलाफ हो तो गलत हो जाती है, वो अमल गलत हो जाता है, और शरीयत के मुताबिक हो तो वो वो दीन होता है, फिर उसकी हैसियत होगी वो किस एतबार से अमल किस दर्जे का है, फर्ज है या मुस्तहब है या क्या है। इस एतबार से हम कहते हैं यहां पर चूंकि अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया है वबतगु इलैहिल वसीला, अल्लाह की तरफ वसीला इख्तियार करो, तो ये किसका हुक्म है? तो अल्लाह का हुक्म क्या होता है पूरा करना जरूरी होता है, फर्ज होता है। मालूम है वसीला क्या है? फर्ज है। लेकिन ये वसीला क्या है, इस सिलसिले में सलफ के अकवाल हमको देखने पड़ेंगे, वाकई वसीला क्या है। इस आयत के जिमन में, इससे पहले कि मैं उसकी यानी तफसीर में जाऊं, लुगवी एतबार से, बाद लोग लगवी बोलते हैं उसको, लगो के माना होते बेफायदा, लुगवी लुगत के एतबार से अलजौहरी कहते हैं अल वसीलत मा युतकर्रब बिही इलल गैब, वसीला उस चीज को कहते हैं जिसके जरिए से गैर का तकर्रुब हासिल करने की कोशिश की जाती है। एक इंसान किसी चीज के जरिए से किसी की नजदीकी हासिल करना चाहता है तो जिस चीज के जरिए से नजदीकी हासिल कर रहा है उसको वसीला कहते हैं। तो वसीला के माना कुर्ब का जरिया, नजदीकी का जरिया। वबतगु इलैहिल वसीला, अल्लाह की तरफ कुर्ब का जरिया इख्तियार करो, ये फर्ज है। अल्लाह के करीब होने की, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करो। जाहिर बात है कि अल्लाह से दूर भागना है। अल्लाह ने क्या फरमाया? फफिरु इलल्लाह, तुम दौड़ो किसकी तरफ? अल्लाह की, अल्लाह की तरफ दौड़ना फर्ज है हमारे लिए। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरु मुबीन, मैं तुम्हारे लिए खुले तौर पर डराने वाला हूं। तो एक बंदे के लिए यह लाजिम है कि वह अल्लाह का कुर्ब इख्तियार करे। अगर वह अल्लाह से दूर भागता है, अल्लाह से दूर भागता है, यह कुफ्र है। एक आदमी अल्लाह का कुर्ब नहीं चाहता है, वो चाहता नहीं कि अल्लाह से करीब हो, दूर जाना चाहता अल्लाह से, बताइए कौन सा बंदा है? ये कुफ्र है। लेकिन एक इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है तो ये खुद दीन है। और मोमिन हमेशा अल्लाह का कुर्ब चाहता है, मोमिन अल्लाह के नजदीक होना चाहता है। इस आयत की तफसीर क्या है? इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल वसीला के माना है अल कुर्बा, अल कुर्बा नजदीकी। वकदा इब्न कसीर कहते हैं वकदा قال مجاهد وابو وائل والحسن وقتاده وعبد الله ابن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد, वसीला के माना है अल कुर्बा नजदीकी। यही قال है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का, मुजाहिद का, ابو وائل, हसन, قتاده, अब्दुल्लाह इब्न कसीर, सुद्दी और इब्न زيد वगैरह, बहुत सारे लोगों ने सलफ में से कहा है कि वसीले के माना क्या है लुगत के اعتبار से? नजदीकी, قرب। وقال قتاده, قتاده تابعی ہیں, کہتے ہیں ای تقربوا الیہ بطاعته والعمل بما یرضیہ, اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو, اللہ کی طرف نزدیکی کا ذریعہ اختیار کرو کا مطلب ہے, کہتے ہیں ای تقربوا الیہ, اللہ کا قرب اختیار کرو, اللہ کی نزدیکی اختیار کرو, کیسے؟ بابا کے پاس جاؤ, نہیں, بطاعتی ہی, اللہ کی طاعت کے ذریعے سے, اللہ کی فرما برداری کے ذریعے سے, والعمل بما یرضی, اور ایسے عمل کے ذریعے سے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ ظاہر بات ہے اللہ کی فرما برداری نفل ہے کہ کیا ہے, مکروہ ہے, کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری, اللہ کے حکم کو ماننا فرض ہے۔ تو اللہ کے فرائض کے ذریعے سے اللہ کا کیا کرو؟ تقرب حاصل کرو۔ اسی لیے بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کا قرب فرائض سے زیادہ کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا ہے, اور وہ نوافل کے ذریعے سے اور زیادہ قرب میں, حدیث قدسی ہے وہ, کہ بندہ فرائض سے زیادہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا کسی اور چیز سے, اور نوافل کے ذریعے سے وہ اور زیادہ قرب میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ وسیلہ فرض ہے, وسیلہ مستحب ہے, کہ اللہ کے فرائض ہیں ان کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے, और फिर कुछ आमाल हैं, तहज्जुद है मसलन, तहज्जुद है नमाज, तो फर्ज नमाज से अल्लाह के करीब होता है, दूर होता है, और नफल से, तो फिर नफल भी फर्ज हुई नहीं, वो मुस्तहब है, वो मुस्तहब है। तो फर्ज और मुस्तहब दोनों के जरिए से अल्लाह का कुर्ब मिलता है। क्यों? अल्लाह ने कुरान करीम में क्या फरमाया, वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर और करीब हो जा। मालूम है सजदे से अल्लाह का कुर्ब मिलता है। अब फर्ज सजदा है या नफल है, तो फर्ज के जरिए से भी कुर्ब मिलता है और नफल के जरिए से भी कुर्ब मिलता है। इसीलिए हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक्रबु मा यकूनुल अब्द मिन रब्बिह वहुवा साजिद फअक्थिरु दुआ। बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में हो, तो खूब अल्लाह से दुआ करो वसीले से। अरे वसीले तो खुद इख्तियार कर लिया तूने, अभी है दुआ का वसीला तेरा क्या है, तेरा सजदा खुद वसीला है। अब तुम मांग, अब ये नहीं कहा वसीले से दुआ करो, कहा कि अब कुर्ब मिल चुका है। वसीला क्या है, वसीले के माना क्या है, समझिए थोड़ा सा। बाद लोगों को इधर समझ में नहीं आ रहे, मैं समझ सकता हूं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो दुरूस हैं, ये बाद लोग बेचारे नए आए एकदम, उनको हदीस ज़ईफ होती है वो भी मालूम नहीं, सही किसको बोलते हैं, ज़ईफ किसको बोलते हैं, नासिक मंसूख क्या है, रावी किसको कहते हैं, ज़ईफ सही और मुनकर, और समझ में नहीं आ रहा कुछ, ये कौन सा दीन है, ऐसा तो कहीं भी हमने सुना नहीं था इससे पहले। तो बाद लोग परेशान हो रहे हैं, वो सब्र करें, उम्मीद रखें, इंशाल्लाह धीरे धीरे सारे मामला हल हो जाएंगे मसायल। इसलिए कि इल्म एक दिन में नहीं आता है, आदमी को धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आती। तो मैं बड़ी माजरत करूंगा उन लोगों से जिनको ये चीजें समझ में ना आए, कोशिश करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल इल्म बित्तअल्लुम, इल्म सीखने से आता है। कोई इंसान मां के पेट से पैदा होता है तो एकदम शुरू नहीं हो जाता, अम्मा अली बा किसको बोलते हैं बताओ, तो ऐसा तो शुरू नहीं हो जाता है, उसको सीखते सीखते धीरे धीरे आता है। तो कुछ चीजें अगर ना समझ में आए तो घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, और ये ना सोचें कि बाबा आइंदा नहीं आऊंगा, ऐसा मत कीजिए। बच्चे को भी स्कूल में जाता तो पहले दिन सब आ जाता, घर पे आते ही बाप पूछता आज क्या सीखा बता, आज तो बैठना सीखा खाली स्कूल में, शरारत नहीं करना सीखा, मुंह पे हाथ रख के बैठो, बैठा है वैसे ही पूरा। तो पहले मुंह पे हाथ रखना सीखता है, फिर मुंह से बोलना सीखता है। और सलफ में यही अकवाल, बाद सलफ ने कहा कि हमने दीनी मजारिस में पहले बैठना सीखा, फिर सुनना सीखा, फिर पूछना सीखा, आप उसके बाद इल्म आया है, तो टाइम लगता है थोड़ा। तो बहरहाल कोशिश करें समझने की, मैं बहुत कोशिश करूंगा आसान करने की। सबसे करीब बंदा उस वक्त होता है जब वो सजदे में हो। अब ये वसीला अख्तियार कर चुका है, ये तकरुब का जरिया है सजदा करना, अब मांगने का वक्त है। तो मालूम हुआ कि वसीला खुद एक अमल है, इसीलिए यहां पर कतादा जो ताबई हैं कहते हैं, ऐ तकर्रबू इलैही बितआतिही वल अमल बिमा युर्दी, यानी अल्लाह ने जो कहा कि वसीला अख्तियार करो अल्लाह की तरफ, इसका मतलब है अब फरमा बरदारी के जरिए से अल्लाह की, अल्लाह को राजी करने वाले अमल के जरिए से उसकी नजदीकी हासिल करो, तो सजदा कर करीब हो जा। अब मांग जो मांगना है, मालूम है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के बाद अल्लाह से मांगने का इस्तेहकाक बंदे को अल्लाह की तरफ से दिया जाता है। मांग, अब मांगना है तो अल्लाह का इकराम है, अल्लाह का एहसान है कि उसने अल्लाह के कुर्ब का जरिया अख्तियार किया, अब मांग, अब अल्लाह जो मांगेगा देगा। क्योंकि हदीस में खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह बड़ा हया वाला है और इस बात से हया करता है कि बंदा जब अपने दोनों हाथ उसकी तरफ उठाता है तो वो खाली हाथ उसको लौटा है। अल्लाह बड़ा हया करने वाला है, अल्लाह को हया आती है कि बंदे को खाली हाथ कैसे लौटाओ, मांग रहे हैं मुझसे। तो बंदा जब अल्लाह से मांगता है, अल्लाह बंदे को देता है। कहते हैं वकरा इब्न ज़ैद, उलाइकल लदीन यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, और ये बंदे जिनको ये लोग मुशरिकीन पुकारते हैं, उलाइकल लदीन यदऊना, वो लोग जिनको ये मुशरिक पुकारते हैं, यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, वो तो खुद अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करते हैं। कुछ जिन्नात थे अरब में, मुशरिकीन उन जिन्नात को पुकारते थे, वो जिन्नात खुद मुसलमान हो गए बाद में। इसलिए अल्लाह ने इन आयत नाजिल की, कि जिनको ये लोग पुकार रहे हैं वो खुद अल्लाह की नजदीक की तलाश कर रहे हैं, ये उनको पुकार रहे हैं। तो यहां ये आयत किसी सिलसिले में आई है, उलाइक अल्लज़ीन यदउन यबतगून इला रब्बिहिमुल वसीला। इब्ने मसूद ने यही इसकी तफसीर की है सही मुस्लिम में, बहुत बड़ा मौजू है, मैं कुछ चीजें छोड़ता हुआ चल रहा हूं उसमें। तो इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला ने यही तफसीर की कि जिन्नात बाज मुसलमान हुए, मुशरिकीन पहले भी उन जिन्नात को पुकारते थे, बाद में भी पुकारते रहे, लेकिन वो मुसलमान हो चुके थे और वो खुद अल्लाह की नजदीकी के लिए अमाल करते थे। तो कहा कि तुम जिनको पुकार रहे हो वो तो खुद अल्लाह की नजदीकी ढूंढ रहे हैं। उलाइक अल्लज़ीन यदउन यबतगून इला रब्बिहिमुल वसीला, कहा कि इब्ने कसीर कहते हैं वहादा अल्लज़ी क़ालहु हाउलाइल अइम्मतु ला खिलाफ बैनल मुफस्सिरीन फी। ये बात जो इन इमामों ने कही है, इतने सारे सलफ, इन्होंने जो बात कही है कि वसीला से मुराद वो अमल है जो अल्लाह को राजी करने वाला हो, तो कहते हैं इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। ला खिलाफ बैन अल मुफस्सिरीन, मुफस्सिरीन के दरमियान इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। तो मालूम हुआ वसीले का मतलब क्या है, कुर्बा, नजदीकी, यानी ऐसा अमल जो अल्लाह के करीब करता है। मालूम हुआ कि कुछ आमाल हैं जिनसे अल्लाह के करीब होते हैं, कुछ आमाल, अब सवाल ही पैदा हो कौन सा अमल अल्लाह के करीब करता है। कोई आदमी सर पे हाथ रख ले इस तरह से, तो क्या ये अमल अल्लाह के करीब करता है? कोई आदमी, भाई मैं सर पे हाथ रख रहा हूं तो क्या करीब करता है ये अमल? कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा अमल अल्लाह के करीब करता है? रुजू कहां करना पड़ेगा? किताब व सुन्नत की तरफ। समझ आ रही बात कि कोई आदमी कहे कि इससे अल्लाह के करीब हो सकते हैं ताकि मांगे अल्लाह से, तो क्या हम अपने तौर पर जब अल्लाह ने हुक्म दिया है वसीला अख्तियार करो, तो क्या अल्लाह हुक्म देगा ऐसा अमल करो जिससे अल्लाह के करीब होते हैं और अमल नहीं बताएगा, आजाद छोड़ देगा? फिर जिसके जी में जो भी आए करो। कोई आदमी सर पे कुरान रख ले, कोई आदमी यानी नंगे पांव मस्जिद को आए, कोई आदमी कुछ भी करे, अपने दिल से हम वसीला अख्तियार कर सकते हैं? नहीं। जब अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज अदा करो, अकीमुस्सला, नमाज का तरीका बताया। रोजे का हुक्म दिया, रोजे के अहकाम बताए। हज का हुक्म दिया, हज का तरीका बताया। ज़कात का हुक्म दिया, ज़कात की तफसील बताई। अल्लाह ताला ने जो भी हुक्म दिया है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उसकी तफसील, उसका तरीका, उसके बारे में मालूमात दी है। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला वसीले का हुक्म दे दे और हमको इख्तियार दे दे, तुम्हारे जो जी में आए करो, मैं करीब हो जाऊंगा उससे? क्या ऐसा हो सकता है? मालूम हुआ कि वसीले का जब हुक्म दिया है तो जब नमाज का हुक्म है तो देखना पड़ेगा नमाज कैसा पढ़ना। तो जब वसीले का हुक्म दिया है तो यह देखना पड़ेगा कि वसीला कैसे इख्तियार करना, उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? बाबा के पास। उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के पास, उस तरफ जाना पड़ेगा। ये किताब सुन्नत में क्या आया, कैसे वसीला इख्तियार करें? तो वसीला एक शरई मसला है, इसमें मनमानी नहीं चलेगी, जैसे नमाज में मनमानी नहीं चलेगी। आप सिंपल समझने की कोशिश कीजिए, वसीला दीनी मसला है, वो दीनी, दीन का मसला है, दिल का नहीं। उसमें दीन का मामला है, दिल का नहीं। किसका भी वसीला चलता है ऐसा नहीं चलेगा। उसमें जैसा वसीला हमको सिखाया गया है वैसा ही हम इख्तियार कर सकते हैं, अपनी मनमानी से हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई आदमी कुरान को चुम के सोचे कि अल्लाह करीब होगा, कोई आदमी मस्जिद का दरवाजा और चौखट उसको जो है मिट्टी मस्जिद के लेके पेशानी को गले को लगाए, सोचे अल्लाह के करीब होंगे, मैं इज्जत कर रहा ना दीन की। कोई आदमी अपने दिल से कुछ भी करे, क्या वो कुछ भी कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो मालूम हुआ वसीला दीनी अमल है, उसके लिए इल्म जरूरी है, और इल्म क्या है? किताब सुन्नत और सहाबा का तआमुल। इस तरफ हमको रुजू करना पड़ेगा इस मसले के समझने के लिए। ये जिसको समझा बहुत आसान है, ये बेसिक्स अगर नहीं समझ में आया वो कुछ भी करना शुरू करेगा और समझेगा कि मैं ऐसा अमल कर रहा हूं जिससे अल्लाह से, अल्लाह के करीब होता हूं। यही वजह है कि आज बहुत सारे मुसलमान दरगाहों पर जाते हैं और कहते हैं कि ये देखो ये लोग डायरेक्ट वाले लोग हैं, और हम लोग कैसे हैं? बुजुर्गान दीन के जरिए जाते हैं। अब वसीले को नहीं समझने की वजह से लोग कैसा करते हैं? देखो जज साहब के पास अपने को अपना मसला हल करने का है, अगर यहां इंटेलिजेंस बहुत चलती है, जरा भाई देखो ये हदीस, हम जा ही ले बहुत, ये आलिम उलमा का काम है। अच्छा, फतवे देना आलिम उलमा का नहीं काम, तेरा है। यानी वसीले का इतना डिफिकल्ट टॉपिक समझाने की कैपेबिलिटी तेरे अंदर है, और मोटे मोटे मसले समझने की तेरे अंदर सलाहियत नहीं। जरा सा कुछ बोलने लगे तो जरा दिखता है इसकी नाव डूब रही, तो बोलता है भाई हम जा ही ले। यानी जैसे प्लेन गिरने लगे तो आदमी पैराशूट जैसी फौरन ले लेता है, वैसे ही जब आदमी देखता है कि अपना मामला डावा डोले यहां हारने लगा, तो फौरन क्या बोलता है, भाई हम जा ही ले। उससे पहले बहस करता है, जैसे ही हारने लगता है बहस में बोलता है भाई हम तो ये आलिम उलमा का काम है, हमारा काम नहीं है। तो भाई अपना अगर केस है, फिर से आते हैं उसके ऊपर, अगर अपना केस है तो क्या डायरेक्ट बात करते हैं जज से? अपना एक वकील रहता है, वो वकील झूठ सच एक करके जज को भी मालूम नहीं रहता, धोखा दे के कैसा तो भी अपने को बचा के लाता बाहर, है कि नहीं? तो ऐसे ही अल्लाह का भी मामला है, ऐसा भी अल्लाह का मामला ऐसा है क्या? केस लड़ते अल्लाह के सामने और यानी हम आरोपी, इसका मतलब क्या गुनाह करा हो? और वो वकील से आप बताइए, वकील से तशबीह दे रहा है किसको? औलिया अल्लाह को, नबियों को। किससे तशबीह दे रहा है? वो वकील है, यानी इसके लिए लड़ने वाले वकील हैं। कौन बताया? कुरान में है वकील है, हदीस में कहां से उनको ये पोजीशन मिली कि वो केस लड़ने का काम करते अल्लाह के यहां पे? कौन बताया तुझको? और अल्लाह जज की तरह है, उस जज की तरह जिसको जब तक के साबित नहीं करेंगे मालूम नहीं पड़ता क्या है, और उसको यानी उन गवाहों की यानी जो भी गवाहियां हैं उसके बेस पे फैसला देना पड़ता, क्या वो मोहताज है? अल्लाह ताला कयामत के दिन खुद इसके जिस्म को गवाह बनाएगा, जबान खुद बंद कर देगा और हाथ पांव बोलेंगे, उसको सब मालूम है। आलिम बिदात सुदूर, सीनों में क्या है सब उसको मालूम है। तो जज से तशबीह दे रहा उसको जिसको कुछ मालूम नहीं होता है, जो मजबूर होता है कि जो सामने बात आए उसी की बेस पे फैसला करे। अल्लाह को क्या ऐसा जरूरत पड़ती है? बोले ठीक है छोड़ो, बादशाह के पास पहुंचना है तो दरबान से पहले उसको खुश करना पड़ता है, उसके बाद एंट्री मिलती। तो औलिया अल्लाह क्या दरबान है? आप बताइए क्या है? चौकीदार है नऊज़ बिल्ला? अल्लाह के इतने बड़े बड़े वली हैं, क्या उनको तुम उसकी तरह मुशाबत यानी तशबीह दे रहे हो? और अल्लाह क्या उस बादशाह की तरह है जो अपने दरवाजे बंद रखता है, किसी को आने नहीं देता है? अल्लाह ऐसा है कि अल्लाह तक पहुंच ही नहीं सकते? यानी अल्लाह का दरवाजा बंद है, आ ही नहीं सकता? जैसे बादशाह अपने इसमें मगन होता है और बंदों को अपने जो है गुलामों को या हुकूमत में जो भी उसके लोग हैं उनको आने नहीं देता अपने पास, क्या अल्लाह ऐसा है? क्या अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया वो इदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दाअवत अद्दाई इदा दान, कि मेरे बंदे ए नबी आपसे मेरे बारे में पूछते हैं, आप उनसे कहिए फइन्नी करीब, मैं तो करीब हूं, मैं तो करीब हूं। उजीबु दाअवत अद्दाई इदा दान, मैं दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूं जब भी वो पुकारता है, जब भी वो दुआ करता है। दो बातें अल्लाह ने बताई, एक तो कुर्बत बताई कि मैं करीब हूं, दूसरे ये कि जब भी वो पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। ऐसा नहीं कि आज सुना कल नहीं सुनेगा, मालूम नहीं, ऐसा नहीं है। दिन हो रात हो, सफर में हो, हदर में हो, गुर्बत में हो, अमीरी में हो, कैसा भी आदमी हो, जब भी वो पुकारता है उसकी दुआ को, पुकार को अल्लाह सुनता है। तो अल्लाह को ऐसे बादशाह से तशबीह देना भी गलत है। बिलाशुबा अल्लाह ताला बादशाह है, लेकिन वो बादशाह है जिसके सामने बादशाह भी फकीर है, और ऐसा बादशाह है जो बंदों की पुकार को कभी भी नजरअंदाज नहीं करता है, वो पुकार को सुनता है। उसको दुनिया के बादशाहों की तरह तशबीह देके और औलिया को चौकीदार की तशबीह देके आप करना क्या जा रहे हैं? तो ये दिल से इस तरह के मसायल दीनी हल करना, ये मसायल हल नहीं करते हैं, मसायल बढ़ाते हैं, कंफ्यूजन और बढ़ता है इससे, इससे बेहुरमती होती है अल्लाह की भी और औलिया की भी। इसलिए हम जो मामला हल करना चाहते हैं उसको दीनी रोशनी में हल करें, दलाल की रोशनी में हल करें। आइए देखते हैं वसीले की शरी हैसियत क्या है और वसीला कैसे इख्तियार करना चाहिए। सही तरीका वसीले का यह है कि तीन चीजें वसीला होती हैं शरी एतबार से, शरी वसीला तीन हैं। नंबर एक, अल्लाह के अस्मा और सिफात के वसीले से दुआ करना। दो, अपनी किसी नेकी के वसीले से दुआ करना। तीन, किसी नेक बंदे से दुआ करवाना जिसकी रूह कब्ज न हुई हो। इसलिए कि अगर मैं कहूंगा जिसकी जो वफात ना पाया हो तो बोलते हैं वो जिंदा है कब्रों में, तो यही हम बोल रहे हैं कि जिसकी रूह, क्योंकि रूह कब्ज होने के बाद किसी से ऐसा कराना हमारे यहां कहीं भी साबित नहीं है, चाहे वो शहीद हो या शहीद ना हो, चाहे वो अल्लाह के यहां जिंदा हो लेकिन वफात होने के बाद में सलफ से नहीं मिलता है कि वो जाके किसी से दुआ करवाते थे। आइए हम देखते हैं सिलसिले में क्या क्या चीजें साबित हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, ये पहला वसीला है अल्लाह के नामों के वसीले से दुआ करना। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, अल्लाह के और अल्लाह के बहुत से अच्छे अच्छे नाम हैं, कई नाम हैं जो सब के सब अच्छे हैं। अल्लाह के नाम हैं बनाओ मत, अल्लाह के नाम ऑलरेडी हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, तो तुम अल्लाह को उन नामों से, उन्हीं नामों से पुकारो। मालूम हुआ अल्लाह को पुकारना उन्हीं नामों से पुकारो अल्लाह ने कहा, जैसे अल्लाह रहमान रहीम अल-वहाब इस तरह के बहुत सारे नाम अल्लाह के हैं, तो तुम अल्लाह को उन नामों से पुकारो। फदउहु बिहा, तुम अल्लाह के इन नामों से अल्लाह से दुआ करो। इन नामों से पुकारोगे तुम्हारी दुआ की कबूलियत के लिए ये वसीला बनेंगे। फदउहु बिहा, तुम इन्हीं नामों से अल्लाह को पुकारो। ये सूरतुल आराफ की आयत नंबर 180 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऐसा करते थे। मुसनद अहमद और तबरानी अल कबीर और अबू याला इब्न हिब्बान और हाकिम की रिवायत में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी तो कैसे मांगी? आपने दुआ में कहा अस्अलुका बिकुल इस्मिन हुवा लक, ए अल्लाह मैं तेरे हर उस नाम से तुझसे दुआ करता हूं, हर उस नाम के वसीले से तुझसे दुआ करता हूं जो तेरा नाम है। हुवा लक समैता बिही नफ्सक औ अनज़लतहु फी किताबिक, जिसको तूने खुद इख्तियार किया है, तूने अपने लिए अपना नाम दिया है, तूने अपने आप को अल्लाह की मर्जी, अल्लाह अपने आप को जो चाहे नाम दे। समय तभी नफसक, जो तूने खुद अपने आप को दिया है। औ अनजल तहूफी किताबिक, या ऐसा नाम जो तूने अपनी किताब में नाजिल किया है। औ अल्लम तहू अहदम मिन खल्किक, या अपनी मखलूक में से, अपने बंदों में से तूने किसी को वो नाम सिखाया है। औ इस्तसर तभी फी इल्मिल गैब इंदक, या अपने इल्म गैब में तूने वो नाम छुपा रखा है, किसी को नहीं बताया। सिखाएगा तो किसको सिखाएगा? अल्लाह अपने नबियों को, और उनको भी नहीं सिखा के अपने पास छुपा के रखा है इल्म गैब में। ऐसे भी नाम है जिनको हम नहीं जानते, तो तूने अपने इल्म गैब में उनको छुपाए रखा है। तो मैं उन तमाम नामों के वसीले से तुझसे दुआ करता हूं। ये किसका तरीका है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही रिवायत है। तो इस हदीस से मालूम हुआ और इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह के नामों से अल्लाह से दुआ करना खुद इस्लाम में है, और अल्लाह के नामों से अल्लाह को पुकार पुकार के दुआ करना ये क्या है? ये खुद एक वसीला है। तो अल्लाह के नाम दुआ के लिए एक वसीला है। उन नामों से पुकारना बंदे का अमल है और ये उसके लिए एक वसीला बन जाता है दुआ की कबूलियत का। दुरे मुख्तार में लिखा हुआ है, दुरे मुख्तार हनफी मजहब की किताब है, वो फित ततार खानिया मज़ियन लिल मुंतका, ततार खानिया फतवा, ततार खानिया हनफियों की किताब है जिसमें फतवे, नाम आपको पसंद आए ना है, ततार खानिया एक नाम है किताब का। मज़ियन लिल मुंतका, मुंतका के हवाले से बात उसमें है। अन अबी यूसुफा अन अबी हनीफ, इमाम अबू यूसुफ से रिवायत है और उन्होंने इमाम अबू हनीफा से रिवायत नकल की, उनका कौल नकल किया है। कहते हैं ला यंबगी लिअहदिन अन यदअ अल्लाह इल्ला बिही, किसी के लिए मुनासिब नहीं है कि अल्लाह को अल्लाह के सिवा किसी और जरिए से पुकारे। अल्लाह से अल्लाह के सिवा किसी और जरिए से मांगे। किसका फतवा है ये? इमाम अबू हनीफा का फतवा है। इस पे बहुत लेदे हुए बाद में बहुत सारे लोगों ने उसके बहुत सारे माना बयान करने की कोशिश की है, लेकिन इब्ने आबिदीन ने आखिर में यही कहा कि नहीं, जो बात है वो यही है, उन्होंने यही बात इख्तियार की है और उन्होंने पिछले अकवाल को सब दूसरे अकवाल को छोड़ा है। کہتے ہیں کہ لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ سے اللہ کے سوا کسی اور ذریعے سے دعا کرے. والدعاء المأذون فيه المأمور به، دعا جس کی اجازت ہے اور جس کا حکم اس کو دیا گیا ہے. مستفید من قوله تعالى، جو اللہ کے اس فرمان سے سامنے آتی ہے، جو اس سے استفادہ ہوتا ہے، اس آیت سے بات معلوم پڑتی ہے، وہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں تو تم انہی ناموں سے اس کو پکارو. تو اللہ سے دعا کرنے کے لیے اللہ کے ناموں ہی کا وسیلہ لینا چاہیے. یہ کس نے کہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ در مختار میں یا الرد المختار بغیر نقطے کے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، جس کو شامی کہتے ہیں، ابن عابدین نے اس کو لکھا ہے. تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی اور نام کا وسیلہ نہیں ہے، ان کے نزدیک اللہ سے دعا کرنے کے لیے اللہ ہی کے ناموں کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے. پسند نہیں آیا کیا ہوا بھائی؟ دوسرا وسیلہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ہے. یہاں والے سوچ رہے ہیں یہ بھی لینا کیا، ایک ایک کر کے سب غائب کرو. دوسرا وسیلہ اپنے نیک اعمال کا ہے، دوسرے کے نہیں، اپنے. اس حدیث سے بات سامنے آئے گی. یہ نہیں کہہ سکتے اللہ میرے نانا بہت نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز کی وسیلے سے میں دعا. دوسرے کا عمل ہمارا ہے. وہ اللہ سلیل انسان اللہ ما سعا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اور انسان اس کی چیز کا مالک ہے جو اس نے خود کمایا ہے. تو آدمی دوسرے کے اعمال کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے؟ اس کے اعمال اس کے ہے ہی نہیں تو اس سے کیا. ویسے ہی جیسے کوئی آدمی کہے کسی بادشاہ کے پاس جا کے، وہ آدمی کتنا اچھا ہے نا، بولے بہت اچھا ہے، بہت نیک آدمی، تو ذرا مجھ کو کچھ دو. تو بولے بہت اچھا ہے، تجھ کو کیوں دوں میں. کوئی آدمی کہیں جائے اور کسی آفس میں جاب کے لیے جائے اور کہے کہ وہ صاحب کتنے اچھے ہیں آپ، بہت پابندی سے، بہت ایمانداری سے کام کرتے ہیں. ہاں بہت ایمانداری سے، مجھ کو کچھ جاب دو. تو اس کے لیے اس کا نام لے کے تیرے کو کیوں جاب دوں میں؟ یعنی کسی اور کا نام لے کے اس کا کیا ہے، اس کے لیے اس کو ملے گا. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ امت ہے جو چلی گئی، ان کے لیے ان کا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے. تو ہر آدمی جو ہے اس کے عمل کا مالک ہے. کسی اور کے عمل کا نام لے کے آپ اپنے لیے کچھ حاصل کر سکتے؟ یہ نہ عقل کے مطابق ہے نہ نقل کے مطابق ہے. ہاں اگر وہ کسی سے کہے کہ اس کو دے دو، یہ اور بات ہے. لیکن اس کا نام لے کے یہ مانگے وہ بہت اچھا ہے تو مجھ کو کچھ دو، تو یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کوئی آدمی مثال کے طور پر آج اگر جائے کسی کے پاس کہے کہ امام ابو حنیفہ کتنے نیک انسان تھے، کہا کہ ہاں تو مجھ کو کچھ دو، تو وہ اچھے تھے تجھ کو کیوں دوں میں، تجھ کو کیوں دوں. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ والے تھے نا، بولے ہاں بالکل، کتنے نیک تھے، کتنے اچھے تھے، اتنے بڑے اللہ واقعی تھے. تو مجھ کو کچھ دو، کوئی دے گا؟ بولے گا تجھ کو کیوں دوں میں بھائی، ان کا نام لے رہا تو تجھ کو کیوں دوں. تو ایک آدمی کسی اور کا نام لے کر مانگے، یہ مطلب عقل میں بھی نہیں آتا ہے کہ اس کو کیوں دیا جائے اس کی وجہ سے، اس کا اس سے کیا معاملہ ہے. شریعت نے بھی اس کو کیا اس کو رکھا ہے، ہم آگے جا کے سب دلائل دیکھیں گے. اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا عمل ذکر کیا. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ایمان والے بندے کہتے ہیں، کیسا؟ الذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. دیکھیں ترکیب کیا ہے. اے اللہ اپنا عمل جتا رہے ہیں، اے اللہ ہم ایمان لائے نا، ہاں لائے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یعنی اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کرنا، اور اس نیک عمل کے پیش کرنے کے بعد اللہ سے کچھ مانگنا. یہ طریقہ خود قرآن سے ثابت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اپنی نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا، یہ بھی ایک وسیلہ ہے جو شریعت نے جائز بلکہ مستحب رکھا ہے. یہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 ہے. اس کے لیے ایک لمبی روایت ہے جو بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انطلق ثلاثۃ راحت ممن کان قبلکم, تم سے پہلے زمانے میں تین لوگ تھے. ایک روایت میں ہے بخاری مسلم ہی کی روایت میں ہے, فاصابہم المطر, تو خوب بارش ہوئی, حتی اووا المبیت الی غار فدخلوه, یہاں تک کہ وہ لوگ ایک یعنی بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے پناہ کے طور پر. فانحدرت صخرۃ من الجبل فسدت علیہم الغار, جب وہ غار میں چلے گئے, غار گفا کو بولتے ہیں ہمارے مراٹھی, ہندی میں گفا بولتے ہیں اس کو, تو وہ لوگ غار میں چلے گئے, کیو میں چلے گئے. جب وہ اندر گئے تو اوپر سے ایک پتھر آ کے اس کے اوپر گر گیا, چٹان جو ہے گر کے دروازے پہ دہانے پہ آ گئی, دروازہ بند. فسدت علیہم الغار, دروازہ بند ہو گیا اس کا بالکل. فقالوا انه لن ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم, انہوں نے آپس میں کہا کہ اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ تو دکھائی دیتا نہیں ہے, الا یہ کہ ہم سب اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں. تینوں نے یہ آپس میں بات ٹھہرائی. فقال رجل منهم, اب کتنے آدمی ہیں؟ تین ہیں. پہلے نے شروع کیا, کہا کہ فقال رجل منهم اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران, اے اللہ میرے ماں باپ تھے دونوں کے دونوں بوڑھے, وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا, میں ان سے پہلے کبھی کھاتا نہیں تھا, کھاتا پیتا نہیں تھا, اور نہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا تھا نہ اپنے جانوروں کو کھلاتا تھا, سب سے پہلے ان کے کھانے کا خیال رکھتا تھا. دیکھیے نیک آدمی ایسا ہوتا ہے, تو میں ان کے کھانے کا خیال رکھتا تھا, اپنے گھر والوں کو بھی ان سے پہلے کھانا نہیں, پہلے ان کو کھانا دیتا تھا, پہلے ان کے کھانے کا خیال کرتا تھا. فَنَأَ بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحَ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَ, ایک دن مجھ کو بڑی دیر ہو گئی, ایک روایت میں ہے کہ میں یعنی اپنی کھیتی وغیرہ کی وجہ سے اس میں پھنس گیا, آنے میں دیر ہو گئی, تو میں آیا وہ سو چکے تھے, وہ سو چکے تھے, اس کا روٹین کیا ہے ان کو کھلانا سب سے پہلے, تو اب میں آیا تو وہ سو چکے تھے. فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين, میں آیا ان کے لیے دودھ دوہ کے لایا, دودھ لایا پینے کے لیے, تو دیکھا وہ سو گئے ہیں. وکرهت ان اغبق قبلهما اهلا او مالا, اور مجھ کو یہ برا لگا کہ میں ان سے پہلے, کیونکہ میرا یہ معمول ہے, تو میں ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو یا اپنے جانور وغیرہ کو کھلاؤں, مجھ کو یہ برا معلوم ہوا کہ میری عادت میں توڑوں گا نہیں. تو کیا ہوا, فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما, میں اسی طرح سے وہ دودھ کا برتن اپنے ہاتھ میں لیے, انتظار میں ان کے اٹھنے کے لیے, بیدار ہونے کے, جاگنے کے انتظار میں کھڑا رہا کہ وہ بیدار ہوں گے اور میں ان کو یہ دوں گا, اسی طرح سے کھڑا اور سوئے ہوئے ہیں. حتی برق الفجر, یہاں تک کہ کیا ہو گئی, صبح ہو گئی, فجر کا وقت ہو گیا. فاستيقظا, وہ دونوں جاگے, فشربا غبوقهما, اور دونوں نے وہ دودھ یا جو بھی تھا وہ پی لیا, دودھ پی لیا. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك, اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره, یہ جو چٹان ہے اس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں, اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری خاطر کیا تھا تو تو ہم کو اس سے باہر نکال دے. اس نے کس چیز کے وسیلے سے دعا کی؟ اپنے اس نیک عمل کی, اللہ ایک نیکی میری ہے اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو تو ہم کو اس سے باہر نکال. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج, وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی سی, لیکن اتنی ہٹی کہ یہ باہر نہیں نکل سکتے, تھوڑی سی جگہ آکسیجن کے لیے جگہ ہو گئی, تھوڑی تھوڑی سی چٹان ہٹی لیکن پورا کھلا نہیں کہ یہ لوگ باہر نکل جائیں. یہ ہو گیا پہلا. وقال الآخر, اب دوسرے کا نمبر آیا, دوسرے نے بھی دعا کی اللہ سے, اس نے کہا کہ ایسا ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں میں فلاں, نہیں اس نے اپنے نیک عمل کے ذریعے سے, اور بتانے والا کون ہے یہ, ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت احب الناس الي. دوسرے نے کہا اللہ ایک میرے چچا کی ایک لڑکی تھی بیٹی اور مجھ کو بڑی پیاری تھی, مجھ کو اس سے بڑی محبت تھی. فأردتها عن نفسها فامتنعت مني. میں نے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ مجھ سے دور رکھا. میں نے اس سے یعنی تقاضا کیا برا لیکن اس نے کبھی مجھ کو اس طرح کا کبھی میری بات پر وہ راضی نہیں ہوئی. حتی المت بها سنه من السنین فجاءتنی. یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ قحط سالی ہوئی, قحط آیا, سوکھا آیا, تو وہ محتاجی میں میرے پاس آئی کچھ مانگنے کے لیے. فاعطيتها 20 و100 دینار على ان تخلي بيني وبين نفسها. تو وہ میرے پاس جب آئی تو میں نے ایک شرط پر اس کو مجبور کیا اس بات پر کہ میں 120 دینار تجھ کو دوں گا لیکن اس کے بدلے میں کیا ہے, تو اپنے سلسلے میں مجھ کو اختیار دے دے, تو رکاوٹ مت ڈال کسی چیز کے لیے. یعنی برا زنا کا ارادہ وہ کر رہا ہے. اب مجبوری میں بیچاری ففعلت, وہ تیار ہوگی اس کے لیے, کیا کریں گے مجبوری میں. تو بعض اوقات مجبوری انسان کو گناہ تک لے جاتی ہے. ففعلت حتی اذا قدرت علیہا, یہاں تک کہ جب میں اس پر قادر ہو گیا, اب بس زنا کا موقع آ چکا ہے, اب زنا ہونے میں ہے, لیکن وہ عورت غیرت مند تھی, دیندار تھی, لیکن مجبوری میں ہاں نہیں ہاں نہیں تیار ہو گئی. لیکن آخری وقت میں بھی اس کا احساس جاگا, اس کا ڈر اللہ کا تقوی والی تھی, اس کو ڈر محسوس ہوا. اس نے کیا کہا, اس نے کہا, کہتے راوی یعنی وہ آدمی کہتا ہے حتی اذا قدرت علیہا, یہاں تک کہ جب میں اس پہ پوری طرح قادر ہو گیا. قالت, اس نے کہا لا احل لک ان تفض الخاتم الا بحقه. کہنے لگی کہ میں یعنی اللہ کی مہر کو حق کے ساتھ ہی توڑنا چاہیے, تو ایسا مت کر, جو تیرے لیے حرام ہے وہ مت کر, یعنی میری پاک دامنی کو داغدار مت کر, کنوارے پن کو ختم مت کر. نکاح کے بغیر حق کیا ہے, نکاح ہے, نکاح کے بغیر مجھ سے صحبت مت کر. اس نے آخری وقت میں اللہ کا اس کو ڈر دلایا. فتحرجت من الوقوع علیہا, یہ بھی مسلمان ہی تھا, اس کو جب آخری وقت میں اس نے ایسا یاد دلا دیا تو اس کو بھی احساس ہوا, کہتا ہے کہ میں اس سے الگ ہو گیا, میں اس سے الگ ہو گیا. فانصرفت عنها وهي احب الناس الی, میں ایسے حال میں ایسے وقت میں اس سے الگ ہوا کہ وہ مجھ کو بہت محبوب تھی, بہت اس سے مجھ کو یعنی تعلق تھا, میرا دل بہت لپکتا تھا اس کی طرف. لیکن اس کے باوجود ایسا بولنے پر, اللہ کا یا دھیان دلانے پر, فوراً میں اس نے کہا اتق اللہ, ایک روایت میں اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر, اور اللہ کی مہر کو حق کے ساتھ ہی توڑ, اس کے سوا مت. کہتا ہے میں الگ ہو گیا اس سے, میں نے چھوڑ دیا اس کو, جبکہ بہت دل چاہ رہا تھا میرا کہ اب زنا کر لو اس سے. وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا, اور جو اس کو میں نے سونا دیا تھا, جو دینار دیے تھے, وہ بھی میں نے چھوڑ دیا اس کو. لے تو یہ لے بھی لے, یہ بھی لے جا, اور نہیں چاہیے مجھ کو کچھ, چلی جا تو, چھوڑ دیا اس کو. اس نے کہا اللهم اے اللہ ان كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. اے اللہ اگر وہ عمل اس وقت جو میں اس کو چھوڑا, میں نے زنا سے رک گیا, میں اس حالت میں کوئی روکنے والا نہیں تھا مجھ کو, تیری خاطر جو میں نے وہ گناہ چھوڑا ہے, اے اللہ اگر میں نے تیری خاطر واقعی تیرے نزدیک تو جانتا ہے, اگر وہ میں نے تیرے لیے کیا ہے, اے اللہ اس مصیبت سے ہم کو نکال دے, اس مصیبت سے ہم کو نکال دے. فانفرجت الصخرة غير انهم لا يستطيعون الخروج منها, اور تھوڑا پتھر کیا ہو گیا, ہٹ گیا, لیکن ابھی بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. اب آیا بچا کون, تیسرے صاحب, تیسرے کا نمبر آیا. وقال الثالث اللهم اني استاجرت اجرا, اے اللہ میں نے کچھ لوگوں کو کرایہ پر لیا تھا, مزدوری پر لیا تھا. فاعطيتهم اجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب, میں نے سب کو ان کی اجرت دے دی تھی, لیکن ایک آدمی اس میں تھا, ایک آدمی ان میں سے تھا جس نے اپنی اجرت میرے پاس ہی چھوڑ دی اور وہ چلا گیا. ایسے ہوتے ہیں نا مزدور, بعض اوقات کام کرتے ہیں कहीं से फोन आ गया, कुछ मसला हो गया, कोई बीमार हो गया, कुछ भी वजह उसकी है, चला गया छोड़ के आपके पास, अपनी उजरत छोड़ के गया है, तो ऐसे ही वो चला गया। فثمرت اجره حتى كثرت منه الاموال, उसका जो छोड़ा हुआ माल मेरे पास था, उसकी जो उजरत मेरे पास थी, उसका जो उसको उजरत देनी थी, पेमेंट थी मेरे पास बाकी उसकी, मैंने उसको इन्वेस्ट किया और मैंने उसको बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, उसको मैंने क्या किया और बढ़ाया। فثمرت اجره حتى كثرت منه الاموال, यहां तक कि वो चीज बढ़ गई, वो चीज बढ़ गई। वहां उस जमाने में बार्टर भी होता था, किसी चीज के बदले में जानवर भी देते थे, कुछ और भी देते थे, तो उसने जितना छोड़ा था अपना हक, इसने क्या किया उसको मल्टीप्लाई किया, उसको बढ़ाया, उसकी परवरिश की। तो फतमर तो अजरहु हत्ता कसरत मिनहुल अमवाल फजा अनी बादहीन फकाल या अब्दुल्लाह अदी इलै अजरी, एक जमाने के बाद वो मेरे पास आया और कहा ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे मेरा मेरी जो उजरत है दे। आज के दौर में आदमी क्या बोलता है, पहले नहीं आने हुआ क्या, हम क्या संभालते बैठना तेरा, गया हो अकाउंट वो क्लोज। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, जमाने के बाद उसका हक है, हक है आपके पास है, अमानत है वो। कहा कि अल्लाह के बंदे मेरी जरूरत वापस ला। فقلت له كل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق, ये सारे ऊंट और ये गाय बैल और ये जो बकरियां, ये दिख रहा है सब कुछ, ये सब तेरा है, ये सब तेरा, इतना दिख रहा है ना, इतने सारे जानवर सब तेरा है। उसने क्या किया था, उसकी उजरत को बढ़ाया, तरबियत दी, पाला पोसा, जानवरों को बड़ा किया और ज्यादा कर दिया उसको, बोले ये सब तेरा है, लेके जाए तेरा तेरा ही। فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي, उसने कहा अल्लाह के बंदे मेरे साथ मजाक मत कर, यानी आदमी क्या सोच रहा हो, हाँ ये ले जा सब तेरा ही, उसको ऐसा लगे मेरे साथ मजाक कर, अच्छा हवा है क्या, ले जा जोर मत, दुकान पूरी लेके जा। आज भी अगर कोई बोलेगा तो आदमी बोलेगा यानी मजाक कर रहा है, चुप बैठेगा वो, अब आता क्या, तो उसको ऐसा लगे मजाक कर रहा है मेरे साथ में। उसने कहा अल्लाह के बंदे मेरे साथ मजाक मत कर। فقلت اني لا استهزئ بك, उसने कहा नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं तेरे साथ में। فاخذه كله فاستاقه فلم يسرق منه شيئا, उसने पूरा वो माल, वो सारे जानवर जो उसने बाकी उसके लिए संभाले थे, क्योंकि पहले जमाने में जानवर ही बहुत बड़ा माल हुआ करता था, इसलिए पिछली रिवायत में आप इसी में देखा उसने क्या कहा, मैं अपने माल को नहीं खिलाता था, तो माल को कैसे खिलाएंगे आप, माल वहां पर जानवर को भी माल माना जाता था, बल्कि बहुत कीमती माल माना जाता था, तो वो पूरा माल उसने लेके गया और हांक के वो ले गया पूरा का पूरा। इसने कहा अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, फइन कुंतु फअलतु ذلک ابتغاء وجهک, ए अल्लाह अगर ये अमल मैंने तेरी रिदा के लिए, तेरे चेहरे के, तेरे दीदार की खातिर मैंने किया था, फफरुज अन्ना मा नहनु फीह, ए अल्लाह ये जो मुसीबत में हम लोग फंसे हुए हैं इसको हमसे हटा दे, ये जो है फंसे हुए इस पूरे पत्थर को इससे हटा दे, चट्टान को हटा दे। फनफरजत सखरतु फखरजु यमशूर, तो पूरी के पूरी चट्टान हट गई और निकले और चलते बने, निकल के चलते फिरते अपने घर घर को सब लोग पहुंच गए। ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, ये मुत्तफक अलैह रिवायत एकदम सही रिवायत है। इसमें क्या बात मालूम हुई, इसमें बात मालूम हुई कि एक आदमी अगर किसी मुसीबत में हो, अपनी कोई नेकी जो स्पेशल नेकी हो, उसको लगता है कि हां ये तो मैंने अल्लाह के लिए किया था और बहुत अच्छे से किया था, वो उस नेकी को अल्लाह के सामने पेश करते हुए कहे कि अल्लाह मैंने उस दिन एक गरीब को खाना खिलाया था, ए अल्लाह मैंने उस दिन ऐसा किया था, मैं अल्लाह उस दिन बहुत दिल बोल रहा था शराब पीने लेकिन नहीं पिया था, ऐसा अगर कोई आदमी है और ऐसा कोई उसने नेकी की थी या गुनाह से बचा था, उसको लगता है वाकई मैं अल्लाह के लिए किया था, अल्लाह के सामने उस नेकी को पेश करके कह सकता है अल्लाह मैंने उसने ऐसे ऐसे किया था, अल्लाह अगर वाकई मैंने तेरे लिए किया था अल्लाह मुझको ये मुसीबत से निकाल दे या मुझको ये अता कर, ऐसा कर सकता है अल्लाह के नबी, कोई आदमी बोल सकता ये तो पहले जमाने में था, तो बताया कौन से जमाने में, इसको जवाब यह है बताया किसने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपने इसको क्यों बताया, मत करो इसलिए बता के बोल रहे भी नहीं अल्लाह के नबी ये पहले के लिए था तुम्हारे लिए नहीं, ऐसा बताएं, बताया इसीलिए ताकि मुसलमान इसको जाने कि अल्लाह ताला इस तरह से बंदों की मदद करता है और ऐसा भी दुआ की जाती है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो चीज सिखाई वो अमल के लिए सिखाई, खाली मालूमात के लिए नहीं कि बैठे बैठे आज ऐसा होता ना चार आदमी बैठ के खाली मालूमात के लिए ही बातचीत करते हैं, ऐसा नहीं होता था, बल्कि वहां तालीम तामील के लिए होती थी, वहां इल्म अमल के लिए हुआ करता था। तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि अपनी नेकी के वसीले से आदमी दुआ कर सकता है। क्या यहां ऐसा किया उन लोगों ने कि अपने बाप दादा के नाम से, नबियों के नाम से, या हर एक ने सबकी ने अल्लाह हम पांच टाइम की नमाज पढ़ते या दो टाइम की या जितने भी टाइम की पढ़ते अल्लाह हम सबकी नमाजों के वसीले से और बाकी भी मुसलमान, आने वाले भी मुसलमान और पहले के भी मुसलमान सबकी नमाजों के वसीले से ऐसा किए? हर एक ने इनफिरादी दुआ अपनी किया, और उसने किसकी ने की? अपने नाना जान की। किसकी नेकी सामने रखी अल्लाह के? अपनी नेकी। तो अपनी नेकी के वसीले से, इसलिए कि वो उसकी है, वो उसकी 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 मिल्कियत है, उसका अमल है, क्योंकि अमल भी अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। समझ में आया? क्योंकि अमल ही के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाता है। तो उसने क्या किया, अपने अपने अमल को हर एक ने पेश किया। तो यह भी वसीला एक है जो आदमी इख्तियार कर सकता है, जो हदीस से साबित है। तो मालूम हुआ हम लोग वसीले के मुनकिर नहीं है। हां, हम ऐसे वसीले के मुनकिर हैं जो साबित नहीं है। कोई आदमी कोई भी वसीला, अब घर के अंदर काबा का फोटो लगा दे और कहे अल्लाह मैं काबा कुछ तो दे दे, क्या है ये? मतलब कोई जरिया है? बोले काबा है ना, तो काबा है ठीक है भाई, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर करके दुआ मांगी थी, तो फोटो लगा के मांग रहा है दुआ उसकी। तो ये कोई चीज हुई, यानी अपने दिल से कुछ भी आदमी करे वो वसीला नहीं होता है। अमल मशरू होना चाहिए, शरीयत में साबित होना चाहिए। नंबर तीन, नेक लोगों से दुआ के लिए कहना, नेक लोगों से दुआ के लिए कहना। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का तज़किरा किया कुरान में, सूरह यूसुफ में। उन्होंने अपने वालिद से कहा, याकूब अलैहिस्सलाम से, कालू या अबा नस्तग़फिर लना ज़ुनूबना, उन्होंने कहा ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे वालिद, इस्तग़फिर लना ज़ुनूबना, आप हमारे लिए हमारे गुनाहों के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, इन्ना कुन्ना ख़ातिईन, यकीनन हम लोग खताकार थे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने वालिद से दुआ करने के लिए कहा, हमारे लिए आप अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करो क्योंकि हम गुनाहगार हैं। قال سوف استغفر لكم ربي, उन्होंने भी कहा ठीक है मैं अपने रब से जरूर दुआ करूंगा, तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूंगा, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, यकीनन वो बड़ा मग़फ़िरत करने वाला रहम फरमाने वाला है। तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई किसी नेक इंसान से दुआ करने के लिए कह सकता है, ये कुरान से साबित है। वो किसी और नबी के पास नहीं गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र पे गए या फुला की कब्र पर गए, नहीं, उन्होंने क्या किया, अपने वालिद साहब से कहा कि हमारे लिए, हम गुनाहगार हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। हदीस में भी ये चीज मिलती है, सूरह यूसुफ में हदीस में भी ये चीज मिलती है, सहाबा का भी ऐसा अमल मिलता है। सफवान इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने सफवान कहते हैं, ये ताबई हैं, वह अकान तहतहु अद्दरदा, ये अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी, अद्दरदा उनका नाम है, उनके शोहर हैं, यानी अबू दरदा के दामाद रदी अल्लाह अन्हु। कहते हैं कदीम तो शाम फअतैत अबू दरदा इफी मंजिली ही, मैं शाम आया, शाम मुल्क का नाम है, मैं शाम आया और मैं अबू दरदा रजी अल्लाह तआला के घर पर आया, फलम अजिद हूं, तो वहां वो मौजूद नहीं थे, वह वजद उम्म दरदा, उनकी बीवी उम्म दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हा वहां मौजूद थी, ये सहाबियां हैं, उनको वहां पाया, फकालत अतुरीदुल हज अलआम, उम्म दरदा रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि क्या इस साल तुम्हारा हज का इरादा है, फकुल सुनाम, कहा कि हां हज को जा रहा हूं मैं, कालत फदउल्लाह लना बिखैर, हमारे लिए अल्लाह से खैर की दुआ करना, हमारे लिए अल्लाह से खैर की दुआ करना, फइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यकूल दावतुल मरइल मुस्लिमी लिअखीही बिज़हरिल गैब मुस्तजाबा, مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا اس کی غیر موجودگی میں ضرور قبول ہوتی ہے. اور ان دراسی ہی ملک موکل, اس کے قریب ہی سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو متعین ہے اسی کام کے لیے. کلما دعا لاخیہ بخیر قال الملک الموکل به آمین ولک بمثل. جب بھی یہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے آمین, اور تجھ کو بھی اسی طرح اللہ عطا فرمائے. جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آمین, اور تجھے بھی اللہ تعالی خیر عطا فرمائے جیسا تو نے اس کے لیے خیر مانگا. یہ نہیں کہ جو مانگ رہا وہی ملے گا, تو کوئی آدمی ڈرے گا اللہ اس کو نیک بیوی دے تو یہ نہیں کہ اس کی بھی شادی ہو گیا, ایسا نہیں. تو یعنی جیسے تو نے اس کے لیے مانگا اللہ اس کو بھی عطا فرما, اس کو بھی عطا فرما. بےچارا کوئی بھی کسی کے لیے نکاح کی دعا, یعنی کوئی بزرگ ہے اللہ ایک دم بہت عمر ہو گئی اور اس کے بعد میں بڑھاپے میں بولے حضرت ہمارے لیے ذرا دعا کرو, کیا دعا کرنے کی ہے؟ تو رشتے کے لیے میں نہیں کرتا بھائی, میرا ہو جائے گا نکاح اس عمر میں. تو بمثل ہمیشہ اس معنی میں نہیں آتا ہے کہ جو یہ ہے وہی, جیسا ایسا ہے ویسا اس کو بھی, تو اس معنی میں بھی آتا ہے. تو بےعین ہی اس چیز کے لیے ضروری نہیں ہے, اس لیے ڈرے نہیں, کسی کے لیے دعا کیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال اس حدیث سے, اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے, اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ ایک دوسرے سے دعا کرنے کے لیے کہتے تھے, ایک دوسرے سے دعا کے لیے. یہ تیسرا طریقہ ہے یعنی وسیلے کا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب یہ صحیح وسیلہ ہے, یہ وہ وسیلہ ہے جس کو ہم شریعت سے ثابت شدہ وسیلہ کہیں گے. کون کون سے وسیلے ہیں؟ نمبر ایک, اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا. دو, اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کرنا. تین, کسی نیک بندے سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرو. کوئی آدمی کہے گا کہ جو لوگ قبروں میں وہ بھی تو نیک ہیں اللہ کے اولیاء, ہم کہیں گے تم بتاؤ صحابہ شہداء کی اور ان صحابہ کی قبروں پہ جا کے ان کے وسیلے سے یا فوت شدہ صحابہ کا نام لے کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, بتاؤ؟ نہیں ہے. بتاؤ, ہم بھی کریں گے. اگر صحابہ کرتے تھے ایسا, ہم بھی کریں گے ایسا, لیکن ایسی روایت ہم کو نہیں ملتی ہے, تو یہ ذریعہ ثابت نہیں. تو کون سے وسیلے ثابت ہے ہم نے دیکھا, اب ہم آتے ہیں اس وسیلے کی طرف جو ثابت نہیں ہے, اور کیا دلیلیں ہیں اور شرعی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے, ان روایات کی جن سے دلیل لی جاتی ہے اسنادی حیثیت کیا ہے, سند دلیل کے اعتبار سے وہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے کیا ہے. اب تھوڑا سا مشکل حصہ شروع ہوگا, تھوڑا اور دھیان سے آپ اس کو سنیں, آدھا سن کے آدھا اپنی طرف سے اس میں جمع نہ کریں. ہاں, آدمی پلک جھپکتا ہے یہ روایت بخاری کی اور پھر کھلتا ہے حدیث ضعیف ہے. اچھا بخاری کی, تو وہ کون سے اسٹیشن پہ تھا اور کون سے اسٹیشن پہ اٹھا, بیچ کے سارے اسٹیشن غائب ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث بخاری میں بھی ضعیف ہے, میں سنا نا درس میں بولتا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہم دیکھیں گے وہ روایات, وہ دلائل جن سے بعض اہل علم نے دلیل پکڑی ہے وسیلہ نام کا اختیار کرنے کی, ایک ایک کر کے ہم ان کو دیکھتے ہیں. اور یہ بہت ہی باریک مسئلہ ہے, اس لیے اس میں راج ہے مرجوح کو دیکھنا, بعض لوگوں کے بس میں نہیں ہوتا ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں, اور کسی سے اس میں غلطی ہو سکتی ہے فیصلہ کرنے میں, عالم سے بھی غلطی اس میں ہو سکتی ہے. ہم علم کی اتباع کرنے کے مکلف ہیں, جو دلائل ہمارے سامنے ہیں ہم اس کی اتباع کریں گے. تو ہم دیکھیں گے دلائل سے کیا بات سامنے آتی ہے, کون سے وسیلے لوگ اختیار کرتے. مثال کے طور پر کسی شخصیت کے نام کے وسیلے سے دعا کرنا, اے اللہ میں فلاں ابن فلاں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, آپ کے نام ذکر کر کے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے, امام احمد یا فلاں امام یا فلاں عالم یا فلاں امام بخاری کے وسیلے سے, ایسا کسی کی شخصیت کا نام لے کے اس کے وسیلے سے دعا کرنا اس کے نام کے وسیلے سے ثابت نہیں ہے, ثابت نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے. بعد میں کچھ علماء اس کے قائل ہیں, ٹھیک ہے ہم اس کو اجتہادی خطا قرار دے سکتے ہیں, ان کو ہم گمراہ بھی نہیں کہتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات ایک بڑا عالم بھی غلطی کر سکتا ہے. ایسی کئی باتیں ہیں جن پہ اس وقت میں مجھ کو تبصرہ نہیں کرنا ہے, اگر وہ ثابت ہے تو ہم بھی کریں گے, لیکن ثابت نہیں ہوا تو ہم اس کو نہیں کریں گے. دوسرا کسی کے مقام کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا کرنا کہ فلاں اتنے بڑے تھے، فلاں نبی ہیں نبوت کا، فلاں کا حق اس طرح سے جتا کہ اللہ کو فلاں کی عظمت بتا کے اللہ سے مانگنا، یہ بھی ثابت نہیں ہے. اللہ کو کسی قسم دینا کہ اللہ تیرے نبی کی قسم تجھ کو مجھ کو بچہ دے ہی، مجھ کو پیسہ دے ہی، مجھ کو بنگلہ دے ہی، تو کسی کی قسم دینا اللہ کو، اللہ کو کسی کی قسم دے دینا کہ دیکھو کسی کی قسم دیے تو پورا ہوتا، تو اللہ کو ہی نبی کی قسم دیا. سب سے بڑے کون ہے بندوں میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے ابن آدم کے اور آدم علیہ السلام کے بھی سید کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا مرتبہ، انبیاء کا مرتبہ، صالحین کا مرتبہ ہم مانتے ہیں، لیکن ان کے مرتبے کا واسطہ دے کر، قسم دے کر اللہ کو، یا ان کا نام لے کر اس کے وسیلے سے دعا کرنا، اس کا ثبوت ہمارے یہاں نہیں ہے. کسی عظیم شخصیت یا کسی عظیم چیز کا واسطہ دے کر اللہ کو اگر مانگنا شریعت میں ہوتا، ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے. ورنہ اگر عظمت والی چیز کا یا شخصیت کا، مخلوق کا واسطہ دینا ہوتا، کوئی بھی آدمی کچھ بھی کرنا شروع کر دے گا. اے اللہ اس ممبر کا واسطہ تجھ کو دیتا ہوں، کیونکہ ممبر کیا ہے؟ اس کی عظمت ہے، دین ہے. اے اللہ اس مسجد کا واسطہ تجھ کو دیتا ہوں، کچھ بھی آدمی بول سکتا ہے. اب کوئی آدمی بولے گا نہیں کر سکتے، تو دلیل کیا ہے اس کے پاس؟ پھر تو یہ کہا جائے گا، تو یہ جو کہہ رہا ہے مسجد کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اے اللہ فلاں چیز کا واسطہ، کسی بھی شخصیت کا واسطہ دے رہا ہے، تو یہ اس کے لیے اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ دلیل ہونا چاہیے. کیونکہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا عبادت ہے. اور عبادت میں منمانا طریقہ چلے گا نہیں. دعا میں سنت اگر نہیں ہوگی، عبادت میں سنت اگر نہیں ہوگی، تو وہ مقبول ہوگی نہیں ہوگی. تو معلوم ہوا کہ عبادات میں منمانی نہیں کر سکتے ہیں، عبادت توقیفی عمل ہے، اس میں پابند ہونا پڑے گا، منمانی نہیں چلے گی. لہذا کسی شخصیت کے وسیلے سے دعا کرنا یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے. اس سلسلے میں جتنی روایات ہیں یا تو وہ ضعیف ہیں، یا تو اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو بعض لوگوں نے لیا ہے. آئیے ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں. پہلی روایت جو عام طور سے ذکر کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی روایت. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس طرح کہا جاتا ہے، لما اقترف آدم الخطیئة، آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی، قال یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ، الفاظ یاد رکھیں ابھی، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت کر دے. بعض روایت میں لما غفرت لی ہے، بعض میں الا غفرت لی ہے. اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے دعا کر رہا ہوں، تو میری مغفرت کر دے. فقال اللہ، اللہ نے کہا، یا آدم، اے آدم، وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اللہ نے پوچھا، اے آدم، تو نے محمد کو کیسے پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ میں نے ابھی تک اس کو اس کی تخلیق نہیں کی، پیدا نہیں کیا. اب وہ بھی سوچیں جو کہتے ہیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، میں نے ابھی تک پیدا نہیں کیا محمد کو، تو نے کیسے پہچانا اس کو؟ قال یا ربی، آدم علیہ السلام نے کہا، اے رب، لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ، اے اللہ، جب تُو نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور مجھ میں تو نے اپنی طرف سے روح پھونکی، اپنی روح پھونکی، رَفَعْتُ رَأْسِي، میں نے سر اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، میں نے عرش کے ستونوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش کے ستونوں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا اسے، فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَىٰ اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، میں نے جان لیا اچھی طرح سے کہ تُو اپنے نام کے ساتھ کسی ایسے ہی کو جوڑے گا جو تیرے نزدیک اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو تیرے نام کے ساتھ جس کا نام آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، अल्लाह मोहम्मद, तो तेरे नाम के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है तो वो नाम ऐसा ही होगा जो बहुत तुझको प्यारा हो। बिलाशुबा ये बात तो हम भी मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक में सबसे महबूब हैं। फकाल अल्लाह, तो अल्लाह ने कहा, सदकता या आदम, ए आदम तूने सच कहा, इन्नहु लअहब्बुल खल्क इलैया, हां सारी मखलूक में ये शख्सियत मुझको सबसे ज्यादा प्यारी है। उदउनी बिहक्किही, तू उसके हक से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक से मुझसे दुआ कर, फकद गफर सुलका, मैंने तेरी यकीनन मगफिरत कर दी। वलौला मुहम्मदुन मा खलक्तुक, और अगर मोहम्मद नहीं होते तो मैं तुझको भी पैदा नहीं करता। इस रिवायत को इमाम अल हाकिम ने अपनी किताब अल मुस्तदरक में रिवायत किया है और यह झूठी रिवायत है, यह मौदू रिवायत है। खुद इमाम अज़हबी ने इसको मौदू कहा है। मौदू किसको बोलते हैं? घड़ी हुई रिवायत को, झूठी रिवायत को। ऐसा कैसा? आपको जो भी दिल में आया झूठा बोलते कि आप क्यों ऐसा। इस हदीस की सनद में एक रावी है अब्दुर्रहमान इब्न जैद इब्न असलम, अब्दुर्रहमान इब्न जैद इब्न असलम। मुहद्दिसीन का इस रावी के बारे में क्या कहना है? अद्दुरी इब्न माइन से रिवायत करते हैं, इब्न माइन का कौल नकल करते हैं मुहद्दिस। अभी सारे मुहद्दिसीन के अखबार, मुहद्दिस कौन? हदीस का एकदम एक्सपर्ट, उसको मुहद्दिस कहते हैं। इब्न माइन कहते हैं, लैस हदीसुहु बिशै, इसकी हदीस कुछ भी नहीं है। ये रावी जो हदीस बयान करता है कुछ नहीं है वो। अबू हातिम अर्राजी कहते हैं, लैस बिकवी फिल हदीस, लैस बिकवीन फिल हदीस, ये हदीस में बिल्कुल कवी मजबूत नहीं है, ये रावी हदीस के मामले में मजबूत नहीं है बिल्कुल। कान फी नफ्सिही सालिहन, ये अगरचा खुद नेक आदमी था, वह फिल हदीस वाहियन, लेकिन हदीस के सिलसिले में वाहियात आदमी था। ऐसा हो सकता है एक आदमी दीनी तबा बहुत नमाज रोजा पाबंदी, लेकिन जब हदीस की फील्ड में आएगा तो कैसा? वाहियात। तो कहते हैं यह हदीस के मामले में बड़ा वाहियात था। इमाम अल बुखारी और अबू हातिम राजी ही का कौल है कि कहते हैं कि ज़ईफ़हु अली इब्न मदीनी जिद्दन, अली इब्न मदीनी ने इसको सख्त ज़ईफ़ कहा है, यह बहुत ज़ईफ़ रावी है। इब्न साद कहते हैं, इब्न साद कहते हैं, कान कसीर अल हदीसी ज़ईफ़न जिद्दन, ये बहुत हदीसें बयान करता था लेकिन बहुत ज़ईफ़ है, सख्त ज़ईफ़ है। قال الطحاوي, इमाम الطحاوي कहते हैं, इनको हनफी कहा जाता है, इमाम الطحاوي कहते हैं, حديثه عند اهل العلم بالحديث في النهايه من الضعف, इस रावी की हदीस अहले इल्म के नजदीक ज़ौफ की हद दर्जा ज़ईफ है। इमाम الطحاوي बोल रहे हैं, अबू जाफर الطحاوي जिनको अहनाफ अपना बैरिस्टर कहते हैं, वकील हमारे, बहुत साबित करते हैं हनफी मसलों को और बहुत बड़े उलमा में से गुजरे हैं। इनकी किताबें मशहूर हैं, शर्फ मानिल आथार और मुश्किलुल आथार। बहरहाल तो ये कहते हैं कि इसकी हदीस अहले इल्म के नजदीक जो हदीस के माहिरीन हैं, कमजोरी के एतबार से कमजोर है, बहुत कमजोर है। इमाम अल हाकिम जिन्होंने खुद ही हदीस नकल की है और अबू नुएम अल अस्फहानी कहते हैं, रवा अन अबी ही अहादीस मौदूआ, रवा अन अबी ही अहादीस मौदूआ, इस रावी ने अपने बाप से झूठी रिवायतें नकल की हैं, झूठी रिवायतें नकल की हैं। इब्नुल जौजी कहते हैं, अजमाऊ अला दाफिही, इसके इस रावी के ज़ईफ होने पर इजमा है। बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं इजमा को नहीं मानते, ये क्या है? इजमा है ना, ये इजमा मानते, इसके ज़ईफ होने पर क्या है? इजमा है। तहजीब तहजीब में और भी अकवाल इसकी तारीफ में बयान हुए हैं। इस रावी के बारे में इमाम शाफी का कौल सुनिए। इमाम शाफी कहते हैं, इमाम मालिक के नजदीक, इमाम मालिक के सामने एक ज़ईफ मुनक़ते हदीस जिक्र की गई जिसकी सनद टूटी हुई थी, तो इमाम मालिक ने उससे कहा कि जा अब्दुर्रहमान इब्ने ज़ैद इब्ने असलम के पास जा, वो तुझको नूह अलैहि सलाम से रिवायत नकल करके बताएगा। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़, आखिरी रसूल नहीं पहले रसूल, उसके पास तो ऐसी भी रिवायत मिलेगी जो नूह अलैहि सलाम से सुनाएगा। सोचिए मतलब ये रावी किस दर्जे का हदीस में है। देखिए किसी का नेक होना एक अलग चीज है, नेक हदीस की फील्ड में फेक भी हो सकता है, है कि नहीं? तो एक आदमी फी नफ्स ही नेक होता है, लेकिन ऐसी हदीस वो घड़ सकता है या ऐसी तमीज उसको नहीं हो सकती हदीस में कि उल्टा पुल्टा कुछ भी बयान करने लगे, ऐसा होता है, ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत हैं। तो इस हदीस के बारे में अहले इल्म का इस रावी के बारे में यह कहना है, और इमाम अल हाकिम खुद इस रावी के बारे में कहते हैं कि रवा अन अबीही अहादीथ मौदूआ, इसने अपने बाप से झूठी हदीसें नकल की हैं, ला यख्फा अला मन तअम्मलहा फी मिन अहलिस सनअति अन अल हमल फीहा अलैही, कि इस फील्ड के हदीस के माहिरीन पर यह बात छुपी हुई नहीं है, जो गौर करे उसके लिए बात छुपी हुई नहीं है कि बोझ इस पर ही है इन झूठी हदीसों के नकल करने का, बाप पर नहीं। तो ये अल मदखल इला सहीह में इमाम अल हाकिम ने यह बात जिक्र की है। तो ये रावी ज़ईफ है, इसकी सनद की बात तो ऐसी है, मतन पे अगर बात करेंगे तो उसका पूरा हमारा दर्स खत्म हो जाएगा। नंबर एक, इसमें अल्लाह ने हाथ से बनाया मानते हैं इसको, इसकी तावील करते हैं, अपनी कुदरत से बनाया। इसमें है कि अभी तक मैंने पैदा नहीं किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कैसा मालूम पड़ा, मानते इसको पैदा नहीं हुए थे तब तक, इस हदीस में यह भी है। इसमें यह है कि लौला मुहम्मद मा खलक्तु, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होते तो मैं तुझको पैदा नहीं करता। तो ये जो लफ्ज है ये खुद उलमा ने कहा कि अल्लाह ने किस लिए पैदा किया, बाद रिवायत में है कि लौला, यानी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना नहीं होता तो अल्लाह अफलाक को पैदा नहीं करता, ऐसा भी यानी बाद रिवायत में आया है। उलमा ने इस पर भी जरा की है कि अल्लाह ने मखलूक को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा नहीं किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिन्नात और इंसानों को किसके लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया, कुरान की नस से साबित है। तो आप क्या कहेंगे, वो लोग जब उनको कहा जाता है कि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आपने कहा इमाम के पीछे पढ़ो, तो कुरान की आयत पेश करते हैं, वइदा कुरिअ अल कुरान फस्तमिउ लहु वअन्सितु लअल्लकुम तुरहमून, कहते कुरान की आयत में कुरान से टकरा रही है हदीस, अब नहीं टकरा रहा, अब यह हदीस नहीं टकरा रही, हमारे नजदीक तो यह कायदा नहीं है, लेकिन इस हदीस में यह टुकड़ा भी काबिल गौर है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होते तो तुझको भी पैदा नहीं करता। ये किसी भी दूसरी सही रिवायत से बात नहीं आती है, और ऐसी रिवायत से आ रही है जो कि खुद फी नफ्सी क्या है, ज़ईफ है। कतई नजर इस तफसील से, इसमें आदम अलैहि सलाम ने जो अल्फाज इख्तियार किए थे वो क्या है, ए अल्लाह मैं अस अलू का बेहक मोहम्मद, ए अल्लाह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक से तुझसे दुआ कर रहा हूं, ऐसे अल्फाज भूलना कैसा है। दुर्रे मुख्तार में लिखा हुआ है और रद्दुल मुख्तार में भी ये चीज है, वह कुरिहा कौलुहु बेहक रसूलिका व अंबियाइका व औलियाइका औ बेहक बैत, ये कहना, ऐसा कहना अपनी दुआ में मकरूह है। मकरूह पहले के लोग जो कहते थे मकरूह, वो हराम के लिए होता था, या जिसको मकरूह है तहरीमी उसको कहते थे, ये बिल्कुल हराम के हुक्म में आता था कि वह कुरिहा कौलुहु बिहक रसूलिका व अंबियाइका व औलियाइका औ बिहक बैत, ऐसा कहना मकरूह है, बुरा है। मकरूह के माने क्या है, अल्लाह ताला ने जिना को भी मकरूह कहा है, तो क्या कहेंगे, मकरूह है, इन अदारी का कहना सही उह इन दरबी का मकरूह, अल्लाह ने उसको भी मकरूह कहा है, बड़े बड़े गुनाह को भी मकरूह कहा जाता है। तो मकरूह का मतलब जरूरी नहीं है कि चलता मकरूह है, ऐसा नहीं है, मकरूह छोटा भी हो सकता है, बुरा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि बुरा छोटा भी हो सकता है, बुरा बहुत बुरा भी हो सकता है। बच्चे का स्कूल को नहीं जाना, एक आध दिन बेवजह छुट्टी करना मदरसे की, अच्छा है कि बुरा है, अरबी सीखने जाता है कुरान, ये बुरा है कि अच्छा है, बुरा है, लेकिन क्या बुरा है, एकदम कबीरा गुनाह है, नहीं है, बुरा है लेकिन छोटा बुरा है। और एक आदमी का जिना करना, झूठ बोलना, शिर्क करना बुरा है, लेकिन ये क्या बच्चे का स्कूल नहीं जाने की तरह बुरा है, बहुत बुरा है। तो बुरे में भी ग्रेड्स होते हैं। तो कहते हैं वो ये बुरा है, मकरूह है, क्या यूं कहना कि रसूलों के हक से, अंबिया के हक से, औलिया के हक से, बैतुल्लाह के हक से मैं दुआ करता हूं, ये ऐसे हक से मांगना बुरा है। लिअन्नहु ला हक लिल खल्क अलल खालिक तआला, इसलिए कि मखलूक का खालिक पर कोई हक नहीं है, مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ در مختار میں لکھا ہوا ہے. تو یہ خود ممنوع چیز ہے کہ اللہ کا کوئی حق بندوں پر نہیں ہے. اپنی طرف سے کچھ بھی ایسا بولنا صحیح نہیں ہے. ہاں اللہ چاہے تو اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر سکتا ہے, جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ اس کی مغفرت کرے گا. تو یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے. لیکن اب آدمی ایسا کہے کہ رسولوں کے حق سے اور فلاں کے حق سے اور فلاں کے حق سے میں اور بیت اللہ کے حق سے, تو ایسا کرنا خود در مختار میں لکھا ہوا کہ کیا ہے, یہ برا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے, کس کو مانیں گے بتائیے. تو ایسی روایت سے دلیل لینا جس کی سند کا یہ حال ہے, آپ سوچئے کہ ایسی روایت سے عقیدے کے سلسلے میں, عبادات کے سلسلے میں دلیل لینا, اتنے بڑے مسئلے میں دلیل لینا صحیح نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے حق سے دعا مانگنا صحیح نہیں ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں, ایسا ہے تو اس کے لیے دلیل اس میں کہاں سے بن رہی ہے؟ فلاں کے وسیلے سے دعا کرنا اس میں ہے ہی نہیں, اس میں تو حق سے دعا کرنا ہے. فلاں کا جو حق ہے اس سے دعا کرنا ہے, تو اس کی دلیل یہاں ملتی نہیں اور وہ ممنوع ہے اور وہ حدیث بھی کیا ہے, صحیح نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک دوسری روایت جو, یہ تو ضعیف تھی, ایک روایت جو صحیح روایت ہے وہ ذکر کی جاتی ہے اور اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں. اس حدیث کو حدیث ضریر کہا جاتا ہے. ضریر نابینا, اندھا. ایک صحابی جو نابینا تھے, نہیں دیکھ سکتے تھے, بینائی نہیں تھی, ان کی حدیث اس سلسلے میں دلیل بنائی جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کیا ہے. عثمان ابن حنیف صحابی ہے, کہتے ہیں ان رجلا ضریر البصری اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب جو ضریر البصر تھے, نابینا تھے, اندھے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال ادعو اللہ لی ان یعافینی, کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھ کو عافیت دے دے, میرا اندھاپن دور کر دے. فقال ان شئت اخرت لك وهو خیر وان شئت دعوت. آپ نے ان سے کہا اگر تم چاہو تو اس کو چھوڑ دو, یعنی اچھا ہونے کو چھوڑ دو. اخرت, اس چیز کو میں بعد کے لیے رکھتا ہوں اور وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وان شئت دعوت, لیکن پھر بھی اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا. دعوت. فقال ادعو, انہوں نے کہا نہیں دعا کرو, یعنی اس کو مجھ کو اندھا نہیں رہنا ہے, آپ دعا کرو, میری دعا کر دو. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه, آپ نے حکم دیا کہ جاؤ وضو کرو اور اچھی طرح سے وضو کرو. ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء, اور کہا کہ دو رکعتیں پڑھو اور یہ دعا کرو. ان کو دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألوکا واتوجہ الیکا بمحمد نبی الرحمہ, یا محمد انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہادیہ لتقضا, یا لتقضی, لتقضا یہاں پر زیادہ صحیح ہے, لتقضا. کہ اللہم انی اسألوکا واتوجہ الیک, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, بمحمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, نبی رحمہ, جو کہ نبی رحمت ہیں, جو نبی رحمت ہیں. یا محمد, اے محمد, انی قد توجہت بکا الی ربی, اے محمد, یا محمد, میں اپنے رب کی طرف آپ کے ذریعے سے متوجہ ہوا ہوں. فی حاجتی ہذہ لتقضى, میری اس ضرورت کے لیے جو پوری ہو جائے, تاکہ وہ ضرورت پوری ہو جائے. اللہم شفعہ فی, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, سفارش میرے لیے قبول کر لے. یہ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں. حاکم کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم شفعہ فی वो शफी नीफी, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश शफायत मेरे हक में कबूल कर ले और मेरी सिफारिश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कबूल कर ले। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लिए सिफारिश कर रहे हैं? मेरे लिए। और मैं सिफारिश कर रहा हूं कि अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर ले और वो जो दुआ मेरे लिए करें अल्लाह कबूल कर ले। तो आपकी सिफारिश मेरे हक में कबूल कर और मेरी सिफारिश आपके लिए कबूल कर ले। अल्फाज नहीं हदीस के, वह अल्लाहुम्मा शफ़िहू फी व शफ़िनी फी। हाकिम के दूसरे अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा शफ़िहू फी व शफ़िनी फी नफ्सी, ए अल्लाह आपकी सिफारिश मेरे हक में कबूल कर और मेरी सिफारिश मेरे इस मामले में कबूल कर ले। और मुसनद अहमद के अल्फाज हैं फ़अल रजुल फ़बरा, उस आदमी ने ऐसा किया, उस आदमी ने ऐसा किया और वो ठीक हो गया, आंख आ गई। नाबीना को भी आंख आ सकती है दुआ के जरिए से, मायूस नहीं होना चाहिए। ये मुसनद अहमद तिरमिदी इब्ने माजा और हाकिम की रिवायत है और सनद के एतबार से इसकी सनद जईद है, अच्छी है। बहुत सारे लोगों ने इस हदीस से दलील ली का, देखो उन्होंने दुआ में क्या कहा, ए अल्लाह मैं किसके वसीले से दुआ करता हूं, किसके जरिए से दुआ करता हूं, हुआ ना मसला हल, खत्म, दर्स खत्म। हम कहते बिला शुबा उन सहाबी ने न सिर्फ ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ की बल्कि आपके सिखाने पे की। और बड़ी दलील है, मैं सहाबी कर ले तो भी दलील है। ये किसने सिखाया था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और नतीजतन क्या हुआ उनकी, यानी दुआ कबूल हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हो गई, वो अच्छे भी हो गए। तो क्या इससे साबित होता है कि दुआओं में आदमी यूं कहे कि ए अल्लाह मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करता हूं, क्या इससे साबित होता है? साबित नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज इस हदीस में यह है कि दुआ के लिए वो सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, घर पे बैठ के नहीं कहा अल्लाह मेरी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमा। वो कहां आए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने आपसे क्या कहा? आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझको शिफा दे। तो मालूम हुआ कि उन्होंने क्या किया था आपसे, उनका मुतालबा क्या था? दुआ का था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दो चॉइस दी थी, क्या थी वो? नंबर एक, तुम चाहो तो सब्र करो, ये ज्यादा बेहतर है, यानी दुआ नहीं। अगर तुम चाहो तो दूसरा क्या, दुआ करूंगा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। तो दो चीजों में से एक चुनना था, पहला दुआ नहीं, दूसरा दुआ हां। उन्होंने किसको चुना? दुआ करो। तो मालूम था, मालूम यह हुआ कि यह मसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाने का है। समझ में आ रही बात? बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है मसला, मुश्किल बात ही आसान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस सहाबी आए, दो में से एक चीज आपने उनसे कहा, वो आए थे दुआ करवाने के लिए, आपने उनसे वादा किस चीज का किया? दो में से एक तुम चुनो, एक तो दुआ नहीं करूंगा सब्र करो, ये ज्यादा बेहतर है, दूसरे कि मैं दुआ करता हूं। उन्हें कहा नहीं, आप दुआ करो। तो आपने जो चॉइस दी, उन्होंने उसको चुना कि नहीं चुना, अब आप पर क्या हो गया, दुआ करना, वादा किया तो पूरा करना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या वादा है? दुआ करूंगा। तो अब ये दुआ करने का वादा था, उन्होंने दुआ करने के मामले को चुन लिया। आपने उनसे कहा ठीक है, अब तुम एक और चीज करो, क्या करो? अच्छे से वजू करो और नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ के अल्लाह से यूं कहो, क्या कहो? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बि मुहम्मदिन नबी रहमत, ए अल्लाह मैं नबी रहमत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तुझसे मांगता हूं और तेरी तरफ मुतवज्जा होता हूं। तो वो जरिया क्या था जो आपने वादा किया था? वो क्या था जरिया? आपकी दुआ था, वो आपकी दुआ थी। तो वो वसीला जो इन्होंने इख्तियार किया था वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। तो यहां जो वसीला है वो वही है जो तीन चीजों में से एक हमने पहले बताया है। तो आपने वही वसीला उनको जिक्र किया, आपने दुआ का वादा किया, अगर ये दुआ नहीं है, आगे आइए, आगे अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा शफ़े हुफी, एला आपकी सिफारिश मेरे हक में कबूल फरमा। तो ये कौन सा मसला है? ये सिर्फ वसीले का मसला है? नहीं, ये सिफारिश का मसला है। और सिफारिश कितनी तरफ से होती है? सिफारिश में कितने होते हैं? वह शफ़े वल वत्र, ऑड और इवन। शफात को शफात क्यों कहते हैं मालूम है? शफात को इसलिए कहते, शफात शफ़ अरबी जबान में दो को कहते हैं, सूरह फजर में जाके देखिए, वह शफ़े वल वत्र। शफा कहते हैं दो की जोड़ी को। एक आदमी अपना काम खुद नहीं करवा सकता है तो किसी की मदद लेता है ताकि काम बने, तो इसको क्या कहते हैं? शफाअत, सिफारिश के दे दो इसको, तो कोई और उसमें होता है जो उसको दिलवाता है। समझ में आ रहा है? तो सहाबी को दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिखाई, उसमें खुद इस बात की दलील मिलती है कि यह मामला कौन सा है, सिफारिश का और शफात का है, जिसमें आपका भी अमल है और दुआ करने वाले का भी अमल है। दो लोगों का अमल है, एक दुआ मांगने वाले का और दूसरा ये कि उसके लिए दुआ में मदद करके मांगने वाले का। एक नबी की दुआ और एक सहाबी की दुआ। अब कितने हो गए? दो। तो ये सिफारिश है। तो इन्होंने दुआ की, एला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुझसे सिफारिश मेरी करने वाले हैं तो वो कबूल कर ले, और मैं तो ये सिफारिश कर रहा हूं तुझसे कि नबी की दुआ कबूल कर ले, मेरी सिफारिश भी कबूल कर ले। तो मामला कितनी तरफ से हो रहा है? और आज जो 14वीं सदी में बोल रहा है अल्लाह नबी के वसीले से मेरी दुआ कर, इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, इसके लिए नबी की सिफारिश है, तो मालूम हुआ कि वो मामला अलग है, ये मामला अलग है। समझ में आ रही बात? क्योंकि मसला बदल जाने से हुक्म बदल जाता है, हाल बदल जाने से हल बदल जाता है। इस हदीस से यह दलील लेना कि जिसके लिए नबी का कोई ऐसा वादा नहीं है, जिसके लिए नबी की दुआ पहले से मौजूद नहीं है, वो ये कहे कि नबी के वसीले से दुआ करता हूं, ये साबित नहीं है। क्या दूसरे सहाबा से ऐसा मिलता है? क्या अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अली और दूसरे सहाबा, आम सहाबा, क्या उनसे ऐसा मिलता है कि वो कहते थे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी दुआ कबूल कर? क्या ऐसा मिलता है? नहीं। मालूम है कि ये मसला ही अलग है। ये आपकी दुआ की मौजूदगी के साथ ऐसी दुआ करना है जिसके लिए पहले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मौजूद नहीं है, वो आदमी अगर ऐसा करता है तो ये ऐसा है जैसा एक नया मसला उसने निकाला है, इसका कोई सबूत नहीं है। नबी के वादे और नबी की सिफारिश और नबी की दुआ के बगैर ऐसा करना, इसकी कोई सबूत नहीं है। कोई आदमी अगर ऐसी उसके पास दलील है तो बताए, ऐसी कोई दलील इसकी नहीं है। तो ये इस हदीस से बहुत बड़ी दलील है उन लोगों की जो इससे साबित करते हैं कि वसीले से दुआ की जाती है। यहां कुछ लोग बोल रहे हैं, यहां या मोहम्मद आ रहा, उसका क्या, उसका भी बोलो कुछ। हम ये कहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर दुआ जो अल्फाज उनको सिखाए, उन्होंने बतौर दुआ वो पढ़े। नबी को पुकारा, दुआ किसे कर रहे थे वो? सिंपल आप बताइए कि दुआ कर रहे थे अल्लाह से या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? तो मालूम हुआ कि नबी को मदद के लिए नहीं पुकार रहे थे, वो किसको पुकार रहे थे? लेकिन जैसा आपने सिखाया सहाबा वैसा ही करते थे, वैसे ही जैसे हम तहियात में पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, हम जैसा सिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसा ही हम करते हैं। कोई कहेगा कि नहीं, ये तो डायरेक्ट बोल रहे ना या रसूल अल्लाह, और डायरेक्ट कह रहे हैं या मोहम्मद, और अत्तहियात में भी हम बोल रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो नबी को खिताब कर रहे हैं, मुखातब कर रहे हैं, यहां पर नबी से मुखातिब होकर हम कह रहे हैं। तो क्या वाकई नबी से मुखातिब होकर सलाम करते थे सहाबा? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद सलाम का जवाब देना क्या है, मकरूह है कि क्या है? सलाम का देना वाजिब है, लाजिम है। तो अगर वाकई वो सलाम करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो क्या नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते थे वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू? क्या कहते थे? नहीं कहते थे। तो एक सलाम होता है बतौर तहिया और एक सलाम होता है बतौर दुआ। तो ये जो सलाम था ये बतौर दुआ है जो हम पढ़ते हैं। बल्कि इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु और आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से मिलता है कि जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने थे तब तक हम कहते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मुसाफे की जो दलील देते आधी देते आधी नहीं देते, आधी का भाग का ये दुआ से मुसाफे की जो दलील दी जाती बुखारी की ऊपर का है नीचे ये है जो मैं बोल रहा हूं कि सहाबी कहते इब्ने मसूद कि जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान थे हम कहते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, लेकिन जब आप का इंतकाल हो गया आपकी वफात हो गई तो फिर हमने क्या कहना शुरू किया अस्सलामु अलन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सलाम हो नबी पर यानी ए नबी आप पर सलाम हो, इसका क्या करेंगे। तो बहरहाल वो मसला दूसरा है इससे जुड़ा हुआ इसलिए मैं कह रहा हूं। तो यहां पर भी ये जो कलिमात हैं कि या मोहम्मद जो कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसे ही सिखाया, वरना बाद के अदवार में सहाबा दुनियावी मसाइल या दीनी मसाइल जब भी आते थे तो या मोहम्मद कह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांगते थे। ये सिर्फ इस दुआ में आपने सिखाया और किसी सहाबी ने इस पर अमल नहीं किया, किसी सहाबी ने इस पर अमल नहीं किया, ये खास था उनके साथ में। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उसके साथ में मौजूद थी। इसको आम करना गलती है, इसको आम करना इसकी कोई दलील नहीं है। तो ये एक रिवायत है जिससे लोगों ने दलील ली है। इसमें खास तौर से ये कहना कि अल्लाह आपकी सिफारिश मेरे हक में कबूल कर और मेरी सिफारिश आपके हक में कबूल कर, मालूम हुआ कि ये दो तरफ से मामला है, दोनों तरफ से एक की दुआ और दूसरे की उसकी मदद हो रही है। कैसे? एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे और रात में आपके वजू का पानी रखते थे। आपने एक दिन उनसे पूछा कि क्या चाहिए मांगो, उन्हें कहा मुझको थोड़ी मोहलत दीजिए, मेहबान वगैरह की रिवाज है, अहमद वगैरह में भी है ये, कहा कि मुझको वक्त दीजिए। आपने कहा ठीक है। उन्होंने आपसे कहा कि असअलु का मुराफकतक फिल जन्नत, ए अल्लाह के नबी आप मैं जन्नत में आपका साथ मांगता हूं। आपने कहा तुझको ऐसे कैसे सूझा? आपने कहा मैंने देखा दुनिया तो फना होने वाली है इसलिए मैंने सोचा कि यही आपसे इसी का मुतालबा करूं कि मैं जन्नत में आपकी सोहबत मुझको मिल जाए, रिफाकत मुझको मिल जाए। आपने फरमाया और उसमें अल्फाज हैं कि उदउनी मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझको जन्नत में आपकी रिफाकत अता फरमाए। तो आपसे क्या कह रहे हैं बाद लोगों ने यहां से बोले को जन्नत दे सकते दुनिया में औलाद नहीं दे सकते नबी, तो इसमें है कि मेरे लिए दुआ कीजिए। तो आपने कहा ठीक है फअइन्नी अला ज़ालिका बिकसरति सुजूद, फअइन्नी अला नफ्सिका, एक रिवायत में ऐसा भी है फअइन्नी अला ज़ालिका बिकसरति सुजूद, ठीक है तो फिर इस पर मेरी मदद कर ज्यादा सदे करके, नबी की मदद, फअइन्नी अला ज़ालिक मेरी मदद कर, मेरी मदद कर इस चीज पर, इस चीज के मिलने पर सजदों की कसरत से। वहां भी वही है यहां भी वही है कि नहीं, वहां भी वही है। उन्होंने आके कहा मेरे लिए दुआ कीजिए मुझको ये चाहिए, आपने कहा ठीक है नमाज पढ़ और मेरी दुआ की क्या कर मदद कर। यहां भी आपने क्या किया, उन्होंने आके दुआ की ठीक है दुआ करूंगा जा नमाज पढ़ और सदे कर और नमाज में इस तरह से कह, तो कैसा कहे मेरी सिफारिश आपके हक में कबूल फरमा। इलैह यसअदु अल-कलिमु अत-तय्यिबु वल-अमलु अस-सालिहु यरफअ, अल्लाह ही की तरफ ऊपर उठते हैं। इलैह यसअदु अल-कलिमु अत-तय्यिब, पाकीजा कलिमात अल्लाह की तरफ ऊपर उठते हैं और नेक अमल उसको और ऊपर उठाता है। मालूम हुआ कि दुआ को नेक अमल कबूलियत में उसके उसकी ज्यादती होती है, दुआ की कबूलियत में नेक अमल मददगार साबित होता है। तो यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, आज हमारे लिए नबी की दुआ है, ऐसा वादा है तो मेरे इस नाम लेके इस तरह से दुआ करो। ऐसा होता तो आप बताइए क्या इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम इतने सारे इमाम ये दुआ नहीं करते? आप बताइए किसी ने इस तरह से दुआ की हो, अल्लाहुम्मा असअलुका बिनबीका नबी रहमा वक्त, पूरा इस तरह से किया? किसी ने दुआ नहीं की। उनके साथ कोई है तो आप बताओ किसी इमाम ने इस तरह से इन अल्फाज से दुआ की हो। तो ये सहाबी के लिए था और इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मौजूद थी और ये मसला अलग है। और आज जो आदमी कहता है अल्लाह मैं नबी के वसीले से दुआ करता हूं मुझको ये चीज दे, इसके लिए उसके पास नबी की तरफ से कोई इस तरह का मामला मौजूद नहीं है, उसको उस पर मामूल करना इल्मी गलती है। इल्मी गलती है। दूसरी दलील आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का, वक्त हो गया इसको लंबा करेंगे बाकी रखे हैं, थक गए अब पक गए, थक भी गए पक भी गए, ऊपर दो नुक्ते नीचे तीन नुक्ते। दूसरी बात हम लेते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं हम लोग। दूसरी बात हजरत आयशा की है, एक रिवायत जिसको इमाम दारमी ने नकल किया है, अबुल जौजा औस इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं, कुहिता अहलुल मदीनति कहतन शदीदन, मदीना में बहुत सख्त कहत पड़ा, सूखा उगरा नहीं कुछ भी, बारिश नहीं। फशकौ इला आयशा, हत आयशा के पास आए और शिकायत की, कहा कुछ बिल्कुल देखो सूखा हो गया है। हत आयशा के पास लोगों ने शिकायत की, फकालत उन्ज़ुरू क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजअलू मिन्हु किवन इला समा। हत आयशा ने कहा जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाओ और उस पर छत में एक सुराख बनाओ, एक हिस्सा खोल दो उसमें से, हत्ता ला यकून बैनहू व बैन समाई सक्फुन, यहां तक के कब्र के और छत यानी आसमान के बीच में कोई चीज हायल ना हो, बिल्कुल खुल जाए आसमान और कब्र के बीच में कोई बीच में चीज रुकावट ना हो। قال ففعلوا, लोगों ने ऐसा किया, فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفصق, यानी यहां पर कहते हैं कि बारिश हुई, ऐसा उन्होंने किया तो खूब बारिश हुई और खूब यानी अनाज उगा, गल्ला उगा, घास उगी और जानवर खा पी के एकदम मोटे ताजे हो गए, उस साल को हमने आमुल फत्क नाम दिया, यानी दूध का साल या यानी खूब मोटेपन का साल या बहुत कुछ उगने का साल। तो ये जो दलील है ये दारमी की रिवायत है, इससे बाद लोगों ने दलील ली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ कर सकते हैं। इसमें कहां आ रहा है, दो चीजें इसमें हैं, एक सनद के एतबार से और एक मतन के एतबार से। सनद के एतबार से यह हदीस सही नहीं है, ज़ईफ है, यह हदीस रिवायत ज़ईफ है, और मतन के एतबार से इसमें वो बात साबित नहीं हो रही है जो साबित करने की कोशिश की जा रही है। आइए पहले सनद का हाल देखते हैं। इस हदीस की सनद में सईद इब्ने ज़ैद नाम का एक रावी है, सईद इब्ने ज़ैद, इमाम अल-बुखारी कहते हैं सदूक हाफिज, ये रावी सच्चा है और हाफिज है। इब्न मईन कहते हैं ये फिका है। अहमद इब्न हंबल कहते हैं कोई हर्ज नहीं, लैस बिल बास, लेकिन अबू हातिम अर-राज़ी कहते हैं लैस बिल कवी, ये रावी क्या है, कवी नहीं है। और इमाम अद-दारक़ुतनी कहते हैं कि ये लयिन है, ये कमजोर है, नरम है। इमाम अद-दारक़ुतनी कहते हैं ये रावी ज़ईफ है। अबू बकर अल बज़्ज़ार कहते हैं ये रावी लयिन है, लयिन का मतलब होता है नरम है, थोड़ा मजबूत नहीं है। अबू हातिम अर-राज़ी और इमाम अन-नसाई कहते हैं लैस बिल कवी, ये कवी नहीं है। इब्नुल मदीनी कहते हैं समीतु यहया दाफ सईद इब्न ज़ैद फिल हदीफ जिद्दन, मैंने यहया से सुना वो सईद इब्न ज़ैद को हदीस में सख्त ज़ईफ कहते थे, बहुत ज़ईफ है ये। इब्न मईन कहते हैं, इब्न मईन से भी ये रिवायत आई, वो उसको ज़ईफ कहते थे। अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद कहते हैं कान यहया इब्न सईद यकूल लैस बिशई, यहया इब्न सईद अल कत्तान कहते थे कोई चीज नहीं, ये रावी क्या है, कुछ नहीं है। और इब्राहिम इब्न याकूब अल जूज़दानी कहते हैं युदाइफून हदीसहु व लैस बिहुज्जा, अहले इल्म इसकी हदीस को ज़ईफ कहते हैं और ये हुज्जत नहीं है, इसकी हदीस दलील नहीं है, ये खुद दलील नहीं है। इब्न हिब्बान कहते हैं कान सदूकन हाफिज़न, अगरचे ये सच्चा रावी था और हाफिज था हदीस का, लेकिन मिम्मन कान युक्ति फिल अखबार, लेकिन ये हदीस में गलतियां करता था, हदीस में क्या करता था, खता करता था, युक्ति फिल अखबार व यहिम, और इसको वहम हो जाता था, हत्ता ला युहतज बिही इदन फरदा, यहां तक कि इसका हाल ये हो गया कि अकेला जब ये रिवायत बयान करे कोई तो उससे दलील नहीं ली जाएगी। देखिए दो चीजें होती हैं, एक हदीस हमको लेना है, अब जो नए लोग इनको समझा रहा हूं, हदीस हम तक पहुंची कैसा पहुंची, अचानक घर में आदमी दरवाजा खोला सामने हदीस ऐसी मिली नहीं, हदीस साहबा ने सुनी, साहबा के बाद ताबईन, और उनसे 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 होते हुए किसी ने अपनी किताब में उसको लिखा, मुहदीस ने। लाने वाले एक से बाद एक के बाद एक कई दौरों में अदवार में हदीस एक से एक आदमी से नकल होते हुए लिखने वाले तक पहुंची। पहुंचाने वालों में मोतबर भी होते हैं नहीं भी होते हैं। मोतबर दो एतबार से मोतबर होने चाहिए, एक दीनदारी के एतबार से, एक याददाश्त के एतबार से। कभी ऐसा होता है कि रावी दीनदारी के एतबार से ही मुत्तकी नहीं होता, भरोसे के लायक नहीं, झूठ बोलता है, धोखेबाजी करता है, क्या भरोसा करने का इसके ऊपर। तो ऐसा रावी जब होता है उसकी हदीस नहीं ली जाती है, उसको गवाह नहीं बना सकते दुनिया के मामलात में, दीन के मामलात में नबी पे गवाह कैसा बना सकते हैं, नहीं लेंगे उसकी बात को। लेकिन कभी कोई दीनदारी में अच्छा होता है, दीनदारी में अच्छा होता है, लेकिन हदीस की फील्ड में वो अच्छा नहीं होता है, उसकी याददाश्त खराब होती है, वो बहुत गलतियां करता है। तो ऐसा रावी अकेला अगर कोई रिवायत बयान करे उसकी रिवायत दलील नहीं होती है, हां वही रिवायत दूसरा भी कोई और रावी बयान कर रहा है तो दलील बन सकती है। समझ में आया, वो नेक है, अरे नेक है लो ना उसको, इसकी बात मानो। तो ऐसा ही है जैसे मौलवी साहब अगर कहें प्लेन ऐसा उड़ाओ, मैं बोल रहा ना तो उड़ाएंगे आप, उसकी फील्ड नहीं है वो, उसकी याददाश्त खराब है, मैथ खराब है या कुछ चीज खराब है, जिसकी जो फील्ड है, जिसकी जो फील्ड है उसमें एक्सपर्ट की बात मानी जाएगी। कोई आदमी अगर उसकी याददाश्त खराब है लेकिन वो मुत्तकी है तो याददाश्त की फील्ड में जो चीज हदीस की फील्ड काय की है, हदीस याद रखनी पड़ती, कि याद नहीं रखे तो भी चलता, चलता ना, नहीं याद रखने की क्या जरूरत है हदीस को, सुनने का जो जी में आए बोलने का ऐसा है, गलत भी बोले तो चलता, नहीं चलता। आपने देखा साहबा और सलफ कितना एहतियात करते थे। तो हदीस के सिलसिले में ऐसा रावी जिससे गलतियां होती है अगर अकेला अगर कोई रिवायत बयान करता है तो उसको दलील माना जाता है नहीं। तो ये जो रावी है अगरचा सच्चा है, अगरचा हाफिज है, लेकिन इसका हाल ये था, इसका हाल बाद में हो गया, इब्ने हिब्बान ने बयान किया है और दूसरे मुहदिसीन ने भी, कि ये हदीस बयान करने में गलती करने लगा, तो इसकी हदीस दलील बनेगी नहीं। अगर अकेला हदीस बयान करे दलील नहीं बनेगा, सपोर्ट में हो तो दलील बन सकता है, सपोर्ट में लाओ लेंगे, है नहीं है तो ये रिवायत दलील नहीं बन सकती है। सनद के एतबार से ये रिवायत ज़ईफ है, मतन के एतबार से मसला क्या है, क्या साबित करने का अपने को, अल्लाह हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे दुआ करते हैं हमारे मसाइल को हल फरमा, आमीन बोल रहे हैं कोई, ऐसा दुआ करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आपके वसीले से दुआ करने के सिलसिले में यह हदीस दलील बनाई जा रही है। अब इस हदीस में ऐसा है क्या, हज़रत आयशा ने ऐसा बताया, जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर और मदीना वाले की कब्र पर जाओ और कहो कि हमको बारिश बरसाओ, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैंने जाऊंगा खाली। इस हदीस से तो उसकी नफी साबित हो रही है। आप बताइए साहबा परेशानी के हाल में क्या ये बोलते थे, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको समझता नहीं, मेरे पास आए, हताशा ने ऐसा कहा तुमको अकल नहीं है, मेरे पास आते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाओ मांगो, उनसे बोलना चाहिए कि मुझसे बोलना चाहिए, ऐसा बोले क्या हताशा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाकर आपसे मांगने के लिए कहा, आपसे मांगने के लिए नहीं कहा। दो, क्या हजरत आयशा ने कहा तो मांगो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करो तो बारिश होगी, क्या ऐसा कहा? तो फिर दोनों भी चीजें इसमें नहीं है, ना नबी से मांगना इसमें है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगना इसमें है। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या साबित हो रहा है, अगर सही है तो सही भी नहीं है। बस इतना है कि आपकी छत पर, आपकी जो कमरा है उसकी छत पर से जो है यानी कुछ हिस्सा खोल दो ताकि अल्लाह और आपकी यानी आसमान और आपके बीच में, कब्र के बीच में कोई हायल ना हो। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये निकल रहा है कि आपके वसीले से दुआ की जा सकती है, इससे साबित नहीं होता है। तो मसला किधर है, रिवायत किधर है, और वो रिवायत भी कैसी है, सनद के एतबार से सही नहीं है। तो तो इससे यह दलील लेना कि अपनी दुआओं में हम यह कहें कि अल्लाह हमारे नबी के वसीले से दुआ कबूल फरमा, इससे साबित नहीं होता है, इससे साबित नहीं होता है। तो बहरहाल यह रिवायत भी ज़ईफ है और इससे इस्तिदलाल उससे ज्यादा ज़ईफ है। और आगे आइए, कोई आदमी बोल सकता अच्छा एक रिवायत हमारे पास है, कब्र वाली भी है, कब्र पे जाके मांगने की रिवायत है, आइए उसको हम देखते हैं। एक रिवायत है जिसको जिसकी सनद इस तरह से है, हद्दसना अबू मुआविया अनिल अहमशी अन अबी सालिह अन मालिक निद्दारी قال كان خازن عمر على الطعام كان خازن عمر على الطعام قال كذا وكذا। आगे आ रहा है, कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की, ये रिवायत कौन नकल कर रहा है, इब्ने अबी शैबा में रिवायत मुसनफ में मौजूद है। इमाम इब्ने अबी शैबा कहते हैं हमसे हदीस बयान की अबू मुआविया ने, उन्होंने ली रिवायत आमश से, वो कहते हैं मेरे पास आई अबू साले से, वो उसको रिवायत करते हैं मालिक उनिदार से, मालिक अद्दार से, वो कहते हैं, वो कहते हैं उनके बारे में कहते हैं कि वो काना खाजिन उमर अला तामी, हाँ उमर ने ताम के ऊपर यानी खाने की चीजों पर इनको जिम्मेदार मुकरर किया था। फजा रजुल इला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं एक आदमी असाब अन्नास कहतुन फी जमानी उमर, हाँ उमर के जमाने में कहत पड़ा। फजा रजुल इला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर आया। फकाल या रसूल अल्लाह, उसने आके कहा ए अल्लाह के रसूल, इस तस्किली उम्मती का फइन्नहुम कद हलकू, अपनी उम्मत के लिए दुआ कीजिए इसलिए कि वह हलाक हो रहे हैं। कब्र पे जाके क्या कहा, बारिश बरसाइए, कब्र पे जाके कहा ज़ईफ है घबराइए मत, आप बोलेंगे तावील फरउ तहसीन होती है, उलमा कहते हैं अतावील फरउ तस्ही, यानी अगर किसी चीज की तावील करना खुद उसको सही साफ मान के चलना होता है, इसलिए आप ये समझ के चलिए ये सही नहीं है। तो कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ कीजिए इसलिए कि उम्मत हलाक हो रही है, यानी सूखे की वजह से हलाक हो रहे हैं। फअतर रजुल फिल मनामी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में आए। फकील लहू, और यानी यहां पर यह भी नहीं इससे इस्तदलाल किया जाए कि नबी आए, उसके ख्वाब में आए और उससे कहा गया इति उमर, उमर के पास जाओ। फअक्रिहु सलाम, और उसको सलाम कहना। व अखबिरहु अन्नकुम मुस्तकीमून या मुस्तकमून, उनसे कहो कि तुमको बारिश दी जाएगी, तुमको बारिश, तुम पर बारिश बरसाई जाएगी। उमर के पास जाओ, उसको सलाम बोलो और वो बारिश होने वाली है। वकुल लहू, और उससे कहो, उमर से कहो अलैका अलैका अलैकल कीस या अलैका बिल कीस, अलैकल कीस, अकलमंदी 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 इख्तियार करो, अकलमंदी इख्तियार करो, उमर से जाके बोलो ऐसा। फआता उमर, वो आदमी उमर रदी अल्लाह तआला के पास आया। फअखबरहू फबका उमर ثم قال, हत उमर रदी अल्लाह तआला के पास आया और ये बयान किया। हत उमर रोए और कहा या रब्बी ला आलू इल्ला मा अजस्तु अन्हु, कहा ए रब, मैं यानी जितना हो सकता है मैं बिल्कुल कोताही नहीं करूंगा मांगने में, मैं बिल्कुल भी कोताही नहीं करूंगा। इब्ने अबी शैबा ने इसको रिवायत किया है अपनी मुसन्नफ में, यह रिवायत सही नहीं है दो वजह से। एक, इसमें आमश हैं जो मुदल्लिस हैं और अबू सालेह से मुनकते रिवायत भी अन के साथ रिवायत करते हैं और ये रिवायत मुदल्लस है अन से है। आ रहा हूं मैं वापस, गाड़ी छोड़ के जा रही नहीं आपको डर मत, आप इसमें एक रावी है आमश, आमश रिवायत ले रहे हैं किससे, अबू सालेह से, लेकिन अबू सालेह से लेते वक्त मैं नहीं बोल रहे अबू सालेह ने मुझसे रिवायत बयान की, बल्कि कह रहे हैं कि अबू सालेह से मुझको रिवायत आई है। कैसा आई, डायरेक्ट आई कि इनडायरेक्ट आई, नहीं बता रहे कुछ भी। और अब आमश कौन है, मुदल्लिस हैं, मुदलिस किसको कहते हैं? ऐसे रावी को कहते हैं जो बीच में से एक रावी छोड़ के किसी ऐसे से रिवायत लेता है जिससे वो मिला है लेकिन रिवायत नहीं की है, या रिवायत ली है तो ये रिवायत ली हुई नहीं है डायरेक्टली, तो ऐसे रावी को क्या कहते हैं? मुदलिस। तो ऐसा रावी, उसकी ऐसी रिवायत जो अन से हो, ये मुनकते मानी जाती है, बीच में एक गायब है कोई तो भी, तो ऐसी रिवायत दलील बनती है? नहीं बनती है, नहीं बनती है। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। आमश खुद सिका है, मोतबर है, लेकिन मोतबर रावी अगर मुदलिस हो तो जब तक के वो हद्दतना समिअतु अखबरना अखबरनी हद्दतनी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल न करे, قال لي इस तरह के अल्फाज अगर इस्तेमाल न करे वो हदीस नहीं ली जाती है, वो मुनकते है, मतलब उसकी सनद टूटी हुई है। बीच में कौन है मोतबर है कि नहीं रावी मालूम नहीं पड़ रहा हमको, इसलिए हम नहीं ले सकते, जब तक कि सब मोतबर साबित ना हो नहीं लेंगे। तो आमश कौन है, आइए देखते हैं। आमश के बारे में इब्न हजर अल अस्कलानी अपनी किताब तारीफ अहल तकदीस बिमरातिब अल मौसूफीन बिततदलीस, किताब का नाम है ये, क्या नाम है? तारीफ अहल तकदीस मिमरातिब अल मौसूफीन बिततदलीस, मुदलिस रावियों के बारे में किताब है, जो ऐसे लोगों से रिवायत करते हैं जिनसे रिवायत सुनी नहीं है या वो रिवायत नहीं सुनी है। कहते हैं सुलेमान इब्न मिहरान अल अमश, नाम क्या है उनका? सुलेमान इब्न मिहरान, मुहद्दिसुल कूफा व क़ारिउहा व काना युदल्लिस, ये कूफा के मुहद्दिस हैं और कारी हैं, लेकिन क्या हैं? मुदल्लिस हैं। वसफहु बिذلك अलकराबीसी वन्नसाई वद्दारकुतनी वगैरहुम, ये बात कि ये मुदल्लिस हैं इसको जिक्र किया है कराबीसी ने, नसाई ने और दारकुतनी और दूसरे उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, तो ये रावी क्या है? मुदल्लिस है। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं अमश अल अमश अन अबी सालेह, अमश की रिवायत अबू सालेह से, मौला उम्मे हानी, अबू सालेह कौन? मौला उम्मे हानी, मुनकते। आमश की रिवायत अबू सालेह से मुनकते होती है। ये रिवायत कौन सी है? इसकी सनद में पढ़ के सुनाता हूं। हद्दसना अबू मुआविया अनिल आमशी अन अबी सालेह अन मालिक इद्दार, तो मालूम हुआ कि यहां पर आमश ने रिवायत अन के लफ्ज से अबू सालेह से रिवायत की है, और इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं कि ये रावी मुदलिस है और अबू सालेह से जो रिवायत नकल की है ये क्या है? मुनकते। मुनकते किसको कहते हैं? लिंक, आपका फोन कट हो गया ना, बोलते कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, तो एक डिस्कनेक्टेड है ये, बीच में कोई रावी है, आमश ने डायरेक्टली रिवायत अबू सालेह से नहीं ली है, समझ में आ रहा है? तो ये इमाम अहमद इब्न हंबल का कहना है। ये एक कमी इसमें नहीं है, इसमें और एक कमी है। दूसरी कमी यह है कि इसमें एक रावी है मालिक अद्दार, ये रावी इसके बारे में इब्ने मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने क्या कहा देखते हैं। मुंदिरी कहते हैं राह तबरानी यूफिल कबीर, इमाम तबरानी ने अल कबीर में इसको रिवायत किया है। वरुआतुहु इला मालिक निद्दारी फिकातुम मशहूरून, मालिक अद्दार तक रावी सब के सब क्या हैं? फिकात हैं और मशहूर हैं। वह मालिक अद्दार ला आरिफुहु, लेकिन ये मालिक अद्दार जो है इसको मैं पहचानता नहीं हूं कौन है। तो एक मुहद्दिस जब किसी रावी के बारे में कहे कि इसको हम पहचानते नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है? वो मजहूल है, ये मोतबर है, इसकी ये साबित नहीं हुआ है, इसलिए इसकी रिवायत नहीं ली जाएगी। तो ये दूसरा रावी मालिक इब्न दार भी क्या है? मजहूल। एक इल्लत इसकी है आमश अन अबी सालेह मुनकते, ये मुदलिस रावी जब तक के मैंने सुना हदीस बयान ना करें मोतबर नहीं है। दो इसमें मालिक नाम का मालिक इब्न दार ये रावी है, इसको जो है उलमा ने मजहूल कहा, ये इसको पहचानते नहीं उलमा मुहद्दिसीन, इसको पहचानते नहीं है। तरगीब तरहीब में मुंदिरी ने बात कही है। हैसमी ने भी मजमा उज़वाद में इसकी रिवायत नकल करके कहा है رواہ الطبرانی فی الکبیر، اس روایت کو الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے. ومالک الداری لم اعرفہ وبقیت رجالہ الثقات، اور مالک الدار اس راوی کو میں پہچانتا نہیں ہوں، باقی راوی سب کیا ہیں؟ ثقہ ہیں، معتبر ہیں، باقی راوی سب معتبر ہیں، لیکن مالک الدار کیا ہے؟ اس راوی کا معتبر ہونا ثابت نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ دو علل اس میں ہیں، دو علتیں اس میں ہیں، کمزوریاں اس میں ہیں، اس لیے یہ روایت دلیل نہیں بن سکتی ہے. آپ بولیں گے مالک الدار تابعی ہے، تابعی کو آپ ضعیف بول رہے، تابعی ضعیف رہتا گیا؟ آئیے، پوری لسٹ میں جمع کیا تھا، اتنی بڑی لمبی لسٹ ہے، پانچ راوی میں بتاتا ہوں اس میں سے آپ کو. نمبر ایک، آپ اگر تقریب التہذیب ڈھونڈیں اس میں راوی آپ کو ملیں گے، کیسا؟ ابراہیم عن کعب ابن عجرہ مجہول، من الثالثہ وہ ہے کہ جو تابعین میں سے آتے ہیں، تابعین کے درجے میں سے آتے ہیں. ابراہیم عن کعب ابن عجرہ، یہ کیا ہے؟ مجہول ہے، یہ راوی کون ہے معلوم نہیں، تابعی ہے معلوم نہیں کون ہے. یعنی اس کی سند میں ایک ہوتا ہے معلوم ہے، نام معلوم ہے، باپ کا نام معلوم ہے، سب معلوم ہے، لیکن یہ راوی ایسا ہے کہ سند کے اعتبار سے روایت میں یہ معتبر ہے کہ نہیں، اس کو کسی نے بھی معتبر کہا نہیں ہے، تو یہ مجہول ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے معتبر ہونے کی کسی نے گواہی نہیں دی ہے حدیث کے سلسلے میں، حدیث کے سلسلے میں، تو یہ راوی مجہول ہے. جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر ایک دم پانچ وقت کا نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سب کرتا ہے، لین دین میں بالکل صحیح ہے، لیکن حدیث بیان کرنے میں وہ غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ جب وہ علم کے معاملے میں بات کرنے لگے بہت غلطی کرے گا. تو یہ دین کے معاملے میں یہ معتبر ہے، آدمی اچھا آدمی ہے، لیکن حدیث پڑھانے بولیں گے کہ آپ اس کو پڑھا حدیث، بہت نمازی تو حدیث پڑھاؤ، حدیث کی فیلڈ میں وہ معتبر نہیں، اس لیے کہ جب بھی بولنے لگے گا غلطی کرتا ہی ہے. تو یہ صحیح ہے، معتبر ہے، کوئی بولنا چاہیے تب جا کے اس کی روایت معتبر ہوگی. دین میں معتبر ہونا کافی نہیں ہے، حدیث کی فیلڈ میں بھی معتبر ہونا ضروری ہے. ابراہیم عن کعب ابن عجرہ، یہ راوی مجہول ہے، من الثالثہ کہتے ہیں ابن حجر اس کو، ثالثہ میں وہ راوی آئے گا جو تابعین میں سے آتا ہے، تابعین میں سے آتا ہے. امام ابو حنیفہ، دیکھیں ثالثہ یعنی تیسرے لیول کا راوی ہے، امام ابو حنیفہ کون سے لیول کے راوی ہیں؟ چھٹے لیول کے راوی ہیں. آپ تقریب التہذیب پڑھیں گے، تقریب التہذیب میں ابن حجر نے زمانے کے اعتبار سے راویوں کو بانٹا ہے، بارہ زمانے بتائے ہیں، طبقات جس کو کہتے ہیں. تو ان زمانوں کے اعتبار سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانے کے حساب سے کون سے لیول پہ آتے ہیں؟ وہ چھٹے لیول پہ. یہ راوی کون سے لیول کا ہے؟ تیسرا. لیکن کیا ہے وہ؟ مجہول ہے، یہ معتبر ہے کہ نہیں معلوم نہیں. فل فلا نام ہے بھائی، ابن عبداللہ الجعفی الکوفی مقبول، من الثانیہ مقبول. آپ بولیں کہ چلو یہ تو مقبول نکلا، مقبول کا مطلب ابن حجر کہتے جس کو میں مقبول کہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر اکیلا حدیث بیان کرے تو معتبر نہیں ہے، ہاں اس کی حدیث اور کوئی بیان کرے تو سپورٹ میں لیں گے ورنہ نہیں. یہ کون سے لیول کا ہے؟ من الثانیہ، دوسرے لیول کا ہے. امام ابو حنیفہ کون سے لیول کے ہیں؟ چھوٹے. اور یہ کون سے لیول کا ہے؟ لیکن اکیلا حدیث بیان کرے تو معتبر ہے، یہ تابعی ہے، یہ تابعی میں سے ہے، لیکن اس کی بھی حدیث معتبر ہے نہیں، اور راوی ہیں. مثال کے طور پر بشر ابن عاصم اللیثی صدوق یخطی من الثالثہ، بشر ابن عاصم اللیثی یہ راوی سچا ہے لیکن غلطی کرتا ہے، تیسرے لیول کا راوی ہے، تابعی ہے، غلطی کرتا ہے. یزید ابن بلال ابن الحارث الفزاری ضعیف من الثالثہ، یہ راوی بھی کیا ہے؟ تیسرے لیول کا ہے، تیسرے طبقے کا ہے، لیکن کیا ہے؟ ضعیف ہے. عبد الرحمن ابن البینمانی مولا عمر مدنی، حضرت عمر کے مولا، عمر رضی اللہ عنہ سے تعلق رکھنے والا راوی ہے، کون؟ عبد الرحمن ابن البینمانی، عمر رضی اللہ عنہ کا آزاد کیا ہوا غلام کہہ سکتے مولا، ممکن ہے یہی ہو. تو نزل حران ضعیف، یہ بھی ضعیف ہے، حضرت عمر سے رشتہ رکھنے والا ہے لیکن وہ بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے. من الثالثہ، تیسرے لیول کا راوی ہے. تابعین میں سے ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ ضعیف ہے. ان کی روایت معتبر؟ کوئی خود ضعیف ہے، کوئی خطا کرنے کی وجہ سے ضعیف ہے، کوئی مقبول ہے سپورٹ میں لے سکتے، اکیلے کو دلیل نہیں لے سکتے اس کی روایت کو. کوئی خود ضعیف ہے، غلطی کرتا ہے. تابعین میں سے سارے ہیں. اگر پوری لسٹ بیان کروں صبح ہو جائیں گے آپ، اتنے راوی ہیں. تو معلوم ہوا کہ کوئی آدمی صحابہ کے دور میں اس کا ہونا یہ اس کو معتبر بناتا ہے نہیں. یزید کو کیا بولیں گے آپ؟ بہت سارے لوگ یزید سے ناراض ہیں، یزید کے بارے میں ایک بڑا اختلاف ہے. تو جو لوگ تابعی صحابہ کے زمانے میں کسی کا ہونا، یزید کس کا بیٹا ہے؟ اب کتنے لوگ ہیں جو یزید کی روایت لیں گے؟ آپ سوچئے. تو یزید خود ایک مختلفی شخصیت ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کے زمانے میں تھے لیکن حدیث میں معتبر ہوں گے نہیں. تو یہ دلیل لینا کہ یہ تو تابعی ہے تو اس کی روایت لی جائے گی، تو یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ مالک دار کون ہے؟ مجہول ہے. مزید یہ آپ آئیے، بعض لوگوں نے کہا، ابن حجر نے ایک روایت نقل کی ہے، وقد روى سيف في الفتوح، فتوح میں سیف نے ایک روایت نقل کی ہے، ان الذي راى المنام المذكور هو بلال ابن الحارث المزني احد الصحابه. یہاں دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے روایت نقل کرنے والا کون ہے؟ مالک الدار. لیکن وہ خواب دیکھنے والا اور قبر پہ جانے والا کون ہے؟ یہ ایک دوسرا پرابلم اس میں ہے کہ وہ آدمی کون ہے، وہ آدمی معتبر ہے یا نہیں ہے جو بول رہا ہے کہ قبر پہ گیا اور خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. خواب میں آئے کس نے بتایا؟ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گیا، اس نے ایسا ایسا دعا کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دعا کیجئے امت کے لیے، اور پھر اس کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ آدمی آ کے اس نے حضرت عمر سے ایسا ایسا کہا، وہ آدمی کون ہے؟ اس کا تو نام اتا پتا بھی معلوم نہیں ہے. یہ تو روایت واقعہ نقل کرنے والا ہے جس کے بارے میں اتنی ساری بات ہم نے کی ابھی، وہ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ میرا خواب کوئی اور تو نہیں دیکھتا ہے نا بھائی، اس نے خود نے کہا میں نے خواب دیکھا اور وہ قبر پر گیا، اور اس کا نام نہ اتا نہ پتا، تو ہم کو کچھ بھی نہیں پتا. اس کو دلیل بنانا عقیدے کے مسئلے میں کیسا ہے؟ جو فقہ کے مسئلے میں قرآن کے مقابلے میں حدیثیں نہیں مانتے جو صحیح ثابت حدیث ہوتی ہے، وہ ایسی حدیثوں کو دلیل بنا رہے اس میں جس کے اوپر اتنی، یعنی ایسے راوی اس کے اندر آ رہے ہیں، اس کو دلیل بناتے ہیں. وہ آدمی کون ہے؟ اس نے حضرت عمر کے سامنے پورا قصہ بیان کیا، میں قبر پر گیا، میں نے ایسا کہا، میرے خواب میں آئے اور پھر ایسا ہوا. اس نے بتایا، کسی ایک روایت میں بتا دو، کسی ایک روایت میں بتا دو کہ اس شخص نے حضرت عمر سے پورا اپنا میٹر بتایا تھا. نہیں ہے. حضرت عمر کو پورا معلوم تھا کہ نہیں؟ ہے نہیں، کسی روایت میں اس طرح سے نہیں ہے. اس آدمی نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول بارش برساؤ، اس نے بھی نہیں کہا. کیا کہا؟ زیادہ سے زیادہ کیا نکل رہا ہے اس سے؟ قبر پہ جا کے کہا اے اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے دعا کیجئے بارش کی. تو زیادہ سے زیادہ کیا نکل رہا ہے؟ قبر پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا امت کے لیے دعا کیجئے اللہ سے، استسقی ربک، اپنے رب سے امت کے لیے دعا کیجئے بارش کی. یہاں سے بیٹھ کے یا رسول اللہ پکارنا نکل رہا ہے، یہاں سے بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اللہ سے دعا کرنا یہ نکل رہا ہے. مسئلہ کدھر ہے؟ دلیل کدھر ہے؟ مسئلہ کچھ اور ہے، دلیل کچھ اور ہے، اور وہ دلیل بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں اور متن کے اعتبار سے رشتہ نہیں. سند کے اعتبار سے بیمار اور متن کے اعتبار سے سوتیلا. اب بتائیے، لا یعنی لا یسمن ولا یغنی من جوع والا معاملہ ہے، یہ کچھ بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس سے. ابن حجر، بعض لوگ سہارا، ابن حجر نے کہا کہ وقد روا سیف فی الفتوح، کچھ لوگوں نے ڈھونڈ کے لائے بتا ہے کون ہے وہ، ہم کو معلوم ہے کون ہے وہ. کہا کہ وقد روا سیف فی الفتوح، سیف نے، سیف راوی ہے، اس نے فتوح میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ان الذی رأى المنام المذکور ہوا بلال ابن الحارث المزنی احد الصحابہ. اب آیا دیکھو ہم کو ملا کون ہے وہ. کہا کہ جس نے جو خواب میں دیکھا تھا، خواب دیکھنے والا کون ہے؟ بلال ابن حارث المزنی، صحابی ہیں. اب تو مانو، ٹھیک ہے صحابی ہیں، بولا کون یہ؟ سیف. तो सैफ कैसा है जरा वो भी तो देखेंगे कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला ने बिलाल इब्ने हारिस रजी अल्लाह ताला ने ख्वाब देखा, ये बोलने वाला सैफ है, तो पहले देखे कि नहीं, वो बाद में देखेंगे, पहले इसको देखेंगे ना, रावी को पहले देखेंगे ये कौन है। तो आइए सैफ की तारीख में क्या क्या देखते हैं। इमाम अबू दाऊद, ये सैफ कौन है? सैफ इब्न उमर अत-तमीमी है, सैफ इब्न उमर अत-तमीमी। अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद जिन्होंने सुनन लिखी है, कहते हैं लैस बिशै, कोई बेकीमत है ये एकदम। ये सैफ कैसा है? बेकीमत है। قال النسائي والدارقطني, नसाई और दारकुतनी कहते हैं ज़ईफ, ये रावी ज़ईफ है। दारकुतनी कहते हैं मतरूक, इसको छोड़ दिया गया है, इससे रिवायत नहीं लेते हैं। यहिया इब्न माइन कहते हैं ज़ईफुल हदीस, और कहा फलसुन खैर मिन्हू, कहते हैं कि ये ज़ईफुल हदीस है, हदीस में बेसिकली ज़ईफ है ये, और फलसुन खैर मिन्हू, रुपए पैसे इससे अच्छे हैं, फल सुन नोट इससे अच्छे हैं, इन्हें उनके नजदीक पैसे की कीमत नहीं थी, हमने देखा ना, वो पैसे को छोड़ सकते थे, तो बोले जिसको हम छोड़ सकते उससे भी बेकीमत है ये, फल सुन खैर मिन हो। और अबू हातिम अर्राजी कहते हैं मतरूकुल हदीस, ये हदीस में छोड़े जाने लायक है, और युशबिहु हदीसुहु हदीसुल वाकिदी, इसकी हदीस वाकिदी की तरह है। वाकिदी के बारे में इमाम शाफी कहते हैं इसकी हदीसें वाकिदी की झूठ का पुलंदा है, तो इसकी हदीसें वाकिदी की तरह हैं। और इमाम अल हाकिम वो कहते हैं उत्तुहिमा बिज़ंदका, बेदीनी की तोहमत भी इस पे, ये बददीन था, जिंदीक था, इसकी तोहमत भी इस पे है। वह हुआ साकितुन फी रिवायत अल हदीस, हदीस की रिवायत में साकित है, गिरा पड़ा है एकदम। और इब्न हिब्बान कहते हैं उत्तुहिमा बिज़ंदका, इस पे जिंदीक होने का इल्जाम है। और रवा इब्न हिब्बान बिइस्नाद अन्नहु काना यदउल हदीस, इब्न हिब्बान ने अपनी सनद से रिवायत नकल की है, ये बात नकल की है अहले इल्म की कि ये हदीसें घड़ता था। अब इसकी रिवायत लेंगे, इसकी रिवायत नहीं ले सकते, तो ये साबित नहीं हुआ कि वो हजरत बिलाल थे। ये सारे अकवाल आप तारीख इस्लाम में और तहदीब तहदीब में देख सकते हैं, ज़हबी और इब्न हजर की किताब में। तो ये मालूम नहीं हुआ आदमी कौन था, फिर उसने ख्वाब देखा, ख्वाब दलील है? ख्वाब शरी दलील नहीं है। कोई आदमी आया कहे मैंने ख्वाब देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इमाम के पीछे किरत करा करो और रफले दैन किया करो, सीने पे हाथ बांधो, मानेंगे? और मैं ख्वाब गिना था, फिर ऐसे ख्वाब देखे उलमा ने कि कहा कि इमाम अबू हनीफा ने कहा नहीं, शाफी यहां कहा, ऐसे भी ख्वाब है, ऐसे भी ख्वाब है। लेकिन हमारे नजदीक सारे इन ख्वाबों की बुनियाद पर हम कुछ नहीं कर सकते इस तरह से, हमारे नजदीक चारों इमाम क्या हैं? मोतबर हैं, और वो भी आलिमों ने देखे हैं, ऐसे नहीं बच्चों ने गली में खेलते खेलते ख्वाब देखा बैठे बैठे, बड़े बड़े आलिम हैं वो भी, आप मानेंगे उसको? फिर ऐसे भी ख्वाब है, बहुत ख्वाब है, फिर ख्वाबों की दुनिया अलग है, जागो। हां, नबी का ख्वाब हुज्जत होता है, नबी का ख्वाब दलील होता है। तो नबियों के ख्वाब इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला भी खुद कहते हैं, अस-सुन्ना में इब्न अबी आसिम की रिवायत है कि रुयल अंबिया वहयुन, अंबिया के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं, नबी के अलावा किसी का ख्वाब? आप बताएं, ख्वाब बहुत आसान तरीका है, अगर हदीस बताए तो सनद मांगना पड़ेगी, और ख्वाब के लिए मैंने देखा, कोई दूसरा चेक भी नहीं कर सकता उसको। और यहां वाले बोल रहे हैं भाई हमने ख्वाब देखा कि फुला जो है पीठ पे कुछ बोरिया बिस्तर लेके जाने में जन्नत मिली, या फुला है हमारी जमात में आओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख्वाब में आए। वो बोले नहीं, हमारा इज्तिमा ऐसा हुआ, और ये जमात में आओ, हमारे जमात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख्वाब में आए। अब किसके ख्वाब में आ रहे और किधर जाना हमने? हर एक के पास ख्वाब है, ख्वाब दलील है, ख्वाब शरीयत में दलील नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब क्या होता है? आपका ख्वाब दलील होता है, नबियों का ख्वाब दलील होता है, ख्वाब दलील नहीं है। और ख्वाब तावील का मोहताज होता है, ख्वाब तावील का मोहताज होता है। ख्वाब के बारे में सारी बातें जो मैंने बयान की हैं, ख्वाब तावील का मोहताज होता है। तो ख्वाब से शरी मसाइल में दलील है। आप बताइए, लोग बोलते हैं तुम लोग मानते नहीं किताब सुन्नत इजमा कियास, ख्वाब उसमें है क्या? انصاف کدھر ہے اس میں؟ نہ اجماع میں ہے نہ سنت نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے نہ یعنی کس میں ہے پھر؟ خواب کون سی اس میں آ رہا؟ بات میں بڑھاؤ پھر اس میں. تو خواب دلیل نہیں ہے, اور وہ آدمی اس نے جو خواب دیکھا وہ بھی دلیل نہیں ہے. حضرت عمر کا عمل کیا تھا یہ بھی دیکھتے ہیں. اب میں ختم کر رہا ہوں اس کو, لپیٹ رہا ہوں سب. اس بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کا عمل کیا تھا اور صحابہ کا عمل کیا تھا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خواب کا معاملہ, یہ جو روایت آ رہی ہے, اس کا بالکل الٹا صحابہ کا عام معمول تھا. ان کا طریقہ الگ تھا. کیا تھا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کبھی قحط آتا, استمرار اس میں ہے, جب بھی کبھی قحط پڑتا تو عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, ان کے ذریعے سے بارش کی دعا کرتے تھے. کیسا آگے آ رہا ہوں میں. فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا. اے اللہ, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برساتا تھا. اب وہ انا نتوسل الیک بعم نبینا فسقینا. اے اللہ, ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں, اب ہم پر بارش برسا. قال فیسقون. صحابی کہتے ہیں ایسا کرتے تھے تو بارش ہو جایا کرتی تھی. بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے, اور یہ بخاری کی روایت ہے, بخاری کی روایت ہے. ایسی روایت ہوتی ہے, یہ پکی روایت. اب اس کو کون دلیل بنائے گا؟ دیکھیے حضرت عمر کا جملہ دیکھیے. اور حضرت عمر اکیلے گھر میں کو دعا کر رہے گئے, ایسی لوگ ہیں استسقاء کے لیے ہیں, بارش کی دعا کے لیے کہاں جمع ہوتے ہیں؟ اور اس میں سب جمع ہوتے ہیں, بہت لوگ جمع ہوتے ہیں. ان سب کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کے سامنے. صحابہ ہیں کی بار تابعین نے اس میں, کیونکہ دو سال کے بعد یہ خلیفہ بنے نا, تو ایک دم بہت لوگ ابھی ہیں. اور دعا میں الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ, پہلے ہم اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, اب ہم کس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں؟ آپ کے چچا عباس کے, حمزہ کے وسیلے سے, حضرت حمزہ کے وسیلے سے کر رہے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں. ہم آپ کے اس چچا کے عباس جو ابھی ہیں ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں. آپ بتائیے حضرت عباس افضل ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں؟ پوچھنے کا سوال ہے, سوال کو جاہلانہ سوال ہے, لیکن یہ اس لیے پوچھا جا رہا ہے تاکہ آدمی مسئلے پر غور کرے کہ آپ کو اگر وسیلہ لینا ہے اور قحط پڑا ہوا ہے, لوگ مر رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے, آپ چھوٹا وسیلہ لوگے کہ بڑا؟ تو پہلے ہم کس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے؟ بارش کے لیے, آپ کے وسیلے. تو اب پرابلم کیا ہے آپ کو وسیلے, آپ نبی کے وسیلے سے دعا کرنے میں؟ اب بھی کرنا چاہیے نا. پہلے نبی کا نام تھا, ابھی نام کھو گیا کیا؟ نام اگر نبی کے نام سے آپ کے, اے اللہ نبی کے وسیلے سے ہماری دعا کر قبول فرما, اگر ایسا ہے, یہی ہے نا, یہی مسئلے پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو پہلے بھی اگر نبی کے وسیلے سے دعا تھی تو آج ایسا کیا ہو گیا نبی کے بعد کہ آپ کے نام کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتے؟ معلوم ہوا وہ جو طریقہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کرنے کا وسیلہ تھا, جو ہم پہلے تین چیزوں میں بتا چکے ہیں کہ آپ دعا کیجئے, یہ دعا کروانے کا وسیلہ تھا. اب ہمارے نبی نہیں ہیں, آپ کی وفات ہو چکی ہے, آپ کون ہیں؟ چچا ہیں. تو جو حیات کا مسئلہ ہے, آپ اپنی قبر میں حیات ہے, اب بھی ایسا ہونا چاہیے. کہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں؟ یا ڈیڑھ بجنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ تو جو بولے آج تو بہت تھکا دیے, بہت تھکا دیے, لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بعد میں لوگ تھکائیں گے آپ کو, پھر سمجھو اس کو. اچھا تھوڑا تھکو, زیادہ تھکنے سے بچیں گے. اگر صرف نام کا وسیلہ ہے یا قبر پر جا کر وسیلہ ہے تو قبر کیا بہت دور ہے؟ کیوں ایسا کر رہے حضرت عمر؟ اور سارے اکیلے بھی نہیں ہیں, کیا کوئی ہمت والا صحابی نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کا وسیلہ چھوڑ کے دوسرے کا وسیلہ لے رہے ہیں, نبی کا لو, ایسا بولنے والا کوئی ہے نہیں وہاں پہ, ایک میں بھی ہمت نہیں ہے. मालूम ही हुआ शायद तुम्हारे को बड़े बड़े बोलने वाले थे, तुमने खड़े होकर कहा जब खलीफा बने अगर मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटके अगर फैसला दूं क्या करोगे? सब चुप चुप। फिर पूछा सुन्नत से हटके अगर मैं करूं तो क्या करोगे? और एक बार पूछा, कोई बोल रहा नहीं। एक आदमी देखो कोई नहीं बोल रहा, चलो मैं बोलता। खड़े हो गए, कहा कि ऐसा सीधा करेंगे जैसा तीर ठोक पीट के सीधा करते हैं। तीर टेढ़ा हो जाए, तीर सीधा होना चाहिए कि टेढ़ा घूमते जाएगा? तीर एकदम सीधा होना चाहिए उसको तीर को छोड़ने के लिए। तो तीर टेढ़ा हुआ तो उसको क्या करना पड़ता? जैसा ठोक के उसको सीधा करते हैं तुमको भी सीधा करेंगे हम ऐसा। कहा अल्लाह का एहसान है कि मुसलमानों में आज भी ऐसे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि अगर उमर ने ऐसा किया तो उसको सीधा कर देंगे जैसा तीर को सीधा कर। ऐसी पब्लिक थी वहां पे। तो इतने सबके बीच में उमर कह रहे हैं कि पहले नबी के वसीले से दुआ करते थे, अब आपके चचा के वसीले से दुआ कर रहे हैं। तो मालूम हुआ कि वो वसीला ऐसा नहीं था कि किसी का नाम लेके वसीला किया जाता है, क्योंकि अगर नाम लेकर वसीला होता था तो इससे अच्छा मौका और क्या है कि हम यूं कहते अल्लाह तेरे नबी के वसीले से और आपके चाचा के वसीले से, ये नहीं अच्छा। नबी का वसीला छोड़ा क्यों? इसलिए कि आप मौजूद नहीं है, आप अपनी कब्र में हैं। हयात है ना? नहीं, वफात हो चुकी है, दफन किया जा चुका है, गुस्ल दिया जा चुका है। अब आपके वसीले से अगर दुआ होती तो इससे अच्छा मौका और क्या था? इतने सारे सहाबा के बीच में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, उनके बीच में अलल ऐलान कह रहे हैं कि पहले हम करते थे ऐसा आप चाचा के वसीले से। तो पहले वो अमल था, पहले कैसा था? अनस रजी अल्लाह तआला कहते हैं कानु इदा कहतु अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तस्कौ बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयस्तस्की लहुम फयस्कौन। सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब कहत होता तो आपसे इस्तिस्का के लिए कहते, आपके जरिए इस्तिस्का करते और आप उनके लिए इस्तिस्का करते तो बारिश होती थी। समझ में आया? आपसे कहते दुआ कीजिए, आप दुआ करते फिर बारिश होती। अब आप नहीं हैं, अब आप बताइए क्या ये अच्छा मौका नहीं था कि सारे सहाबा को लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाएं और कहें अल्लाह के रसूल हमारे लिए दुआ करो, या रसूल अल्लाह बारिश बरसाई है। दोनों भी चीजें मुमकिन नहीं थे क्या उनके लिए? क्या हमसे ज्यादा वो नहीं जानते थे कि वाकई मांगने का दर कौन सा है? जब जिंदगी में नबी के पास आते थे बारिश के लिए, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं जा रहे? बहुत सारे लोग बोलते हैं साहबा को नहीं मानते, ये कौन मानेगा? ये खलीफा नहीं है और ये अकेले का खलीफे का फैसला है, सारे साहबा मौजूद है, सबका फैसला है ये, उनका इकरार खुद उनके साथ शरीक है, ये सहाबा का मनहज है, ये हम मानते हैं। कि जब उमर रजी अल्लाह तआला ने और सहाबा ने ऐसे वक्त में ये छोड़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पर नहीं गए और ना आपके नाम के वसीले से कहा, ना आपको पुकार के कहा, ना आपकी खबर से आपसे मांगा, ना आपको मांगने के लिए कहा, जब इतने मौके पर भी उन्होंने नहीं किया, हम चाय चाहिए और खाना चाहिए, बिरयानी चाहिए और रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, इसके लिए हम मांगे, क्या दलील है तुम्हारे पास? कहां से लाए दलील? सहाबा का तरीका यह है। यह भी रिवाज जो मैंने जिक्र की इब्ने हिब्बान की रिवाज है। आखिरी रिवाज पर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, सुलेम इब्ने आमिर अल खबाइरी कहते हैं अन समा कहतत, बारिश रुक गई, आसमान रुक गया, कहत आ गया। फखराज मुआविया था इब्न अबी सुफियान, मुआविया इब्न अबी सुफियान आए, बाहर निकले। वह आहलु दिमश यस्तस्कून, और अहले दिमश्क यानी बारिश के लिए जमा थे, मुतालबा कर रहे थे। फा सब के सब यानी बारिश के लिए जमा हुए। फलम अकाद मुआविया तो अल मिंबर, मुआविया रदी अल्लाह तआला जब मिंबर पर बैठे, कादा अयन यजीद इब्न अल अस्वद अल जुरशी, मुआविया रदी अल्लाह तआला जब मिंबर पर बैठे का यजीद इब्न अस्वद जुरशी कहां है? यजीद इब्न अस्वद अल जुरशी कहां? इताबईन में से है ये, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ही में मुसलमान हो गए थे लेकिन मुलाकात नहीं है। जहां तक कि मुझको याद है तरावी में 47 पढ़ते थे, 47 रकत पढ़ते थे यजीद ने अस्वद। तो 20 वाले हमको बोलते ना तुम थोड़ी पढ़ते हैं, तुम भी थोड़ी पढ़ते हैं, ये 47 पढ़ते थे। थोड़ी रिलेटिव होती है, तुम किससे जोड़ के थोड़ी बड़ी बोल रहे हो हमको? ऊपर जोड़ो अपने से, हमसे क्यों जोड़ते हो? तो कहा कि यजीद इब्न अस्वद अल जुरशी कहां है। फनादा हुन्नास, लोगों ने पुकारा यजीद इब्न अस्वद अल जुरशी कहां है। फअक्बला यतखत्तन्नास, ये यानी आगे बढ़ते हुए लोगों को फलांगते हुए आगे आए यजीद इब्न अस्वद ताबई। फअमरहु मुआविया फसाइद अल मिंबर फकादा इंद रिजलैही, हज़रत मुआविया रजी अल्लाह तआला मिंबर से उतरे। फअमरहु मुआविया, उनको हुक्म दिया हज़रत मुआविया ने मिंबर पर चढ़ो, और खुद उतर गए मेंबर से और उनके पांव के पास बैठे। साहब बहुत तवाज़ु वाले थे। فقال معاويه اللهم انا نستشفع اليك اليوم بخيرنا وافضلنا, अल्लाह हम तेरी तरफ सिफारशी बना रहे हैं अपने में से सबसे बेहतर और सबसे अफजल को। तेरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, सिफारिश के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। اللهم انا نستشفع اليك بيزيد بن الاسود الجرشي, अल्लाह हम तेरी तरफ यजीद इब्न अस्वद अल जुरशी को सिफारशी बना रहे हैं। या यजीद, ए यजीद, इरफा यदैक इलल्लाह, अपने दोनों हाथ उठाइए अल्लाह की तरफ, अपने दोनों हाथ उठाइए। फरफा यजीद यदैही व रफा अन्नास अयदीहुम, यजीद इब्न अस्वद ने हाथ उठाए, लोगों ने भी हाथ उठाए। फमा कान औशका अंसारत सहाबतुन फिल गर्बी कअन्नहा तुर्स, आसमान में कुछ नहीं था, फिर देखा थोड़े ढाल की तरह थोड़े बादल ऐसे दिखाई दिए। वहब्बत लहा रीहुन फसुकीना हत्ता काद अन्नास ला यसिलूना इला मनाज़िलिहिम, हवाएं तेजी से चलने लगी और ऐसी बारिश हुई कि लोगों को घर पे जाना मुश्किल हो गया। इसको इमाम इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्क में रिवायत किया है और उसकी सनद सही है। ये वसीला है, मुआविया रदी अल्लाह तआला को नहीं समझता था, अल्लाह अपने नबी के वसीले से ताबई का वसीला ले लें, साहबा नहीं मिले उनको, हम में जो मौजूद है ये हमको सबसे अच्छा लग रहा है, अल्लाह इसके वसीले से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह कबूल कर, करो दुआ। मालूम हुआ कि उनका नाम लेके जो कह रहे हैं दुआ, उसके साथ में उनकी दुआ भी मौजूद है, वैसे ही जैसे हदीस दरीर में है, अल्लाह मोहम्मद के वसीले से मैं दुआ कर रहा हूं, तो आपकी दुआ मौजूद होना चाहिए वहां पर, क्योंकि आपकी दुआ थी और इनका यहां पर अमल था। इस तरह की सिफारिश को हम भी मानते हैं कि कोई आदमी यूं कहे कि अल्लाह मैं फुलां के जरिए से तुझसे मांग रहा हूं, मुझको दे दे, कहे तुम भी दुआ करो, अगर ऐसा अगर है तो हम मांगते हैं, इसको हम मानते हैं। दीन मनमानी नहीं है, दलील के ताबे होना जरूरी है, दिल के ताबे नहीं, दलाल के ताबे आदमी को होना चाहिए। ये सहाबा हैं, इनका तरीका क्या ये नबी का मर्तबा नहीं जानते। एक साहबी बताओ जो कहता हो अल्लाह हम तेरे नबी के सदके तुफैल में, ये तो कहते आए मालूम भी नहीं, तुफैल कहां से आए, सदके तुफैल में कहां है, नबी के वसीले से मांगना कहां है, बताओ ये साहबा कौन है, ये कौन है, ये हमारे असलाफ है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और जो रिवायतें हैं ये सच्ची पक्की मोटी मोटी एकदम मजबूत रिवायतें, खुली खुली प्यारी प्यारी रिवायतें, इनको छोड़ के इधर उधर भागना, कहीं से जई फुटा के लाना, कहीं से ऐसी लाना, कैसा है आप बताइए। तो आदमी को दीन में ऐसी दलीलों के ताबे होना चाहिए जो मोतबर हैं, औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लिहाजा ये सही रिवायत है और ये हमारा मनहज है, ये हमारा तरीका है कि हम बिला शुबा वसीले को मानते हैं, और ये वसीला कि कोई हम में से सालेह इंसान हो उससे हम यूं कहें कि भाई हमारे लिए दुआ करो, तो ये जायज है बल्कि मुस्तहब है, अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं। हां लेकिन ये तकिया कलाम बना लेना और कैसे क्या है हम दुआ में याद रखो, ये जो बिछड़ते वक्त में इस तरह से कहना और सलाम ना करना, ये इसकी कोई दलील नहीं है कि जब भी कोई किसी से मिले एक तकिया कलाम बना लेना इस तरह से कि भाई और कैसे क्या ठीक है, हां ऐसा वैसा इधर उधर चाय पानी, दुआ में याद रखो, चलो जाल। ये जो तरीका लोगों ने बना रखा है सलफ से हमको नहीं मिलता है। ये बुरा नहीं है कि कोई आदमी किसी से कहे कि मेरे लिए दुआ करो, वाकई उसको कुछ प्रॉब्लम है और वो कह रहा है भाई मेरे लिए दुआ करो, मेरा मसला है, मेरे लिए खैर की दुआ करो, ये बुरा नहीं है, लेकिन हर मर्तबा जब भी मिले इस तरह से करना ये साबित नहीं है। इसलिए आदमी परहेज करे, वाकई उसको लगता हो कि मेरे लिए अभी दुआ का टाइम आ गया है, मेरा फुला मसला है, अब बोलना चाहिए किसी को, थोड़ा तकलीफ में हूं, तो आदमी इस वक्त में कह सकता है या किसी मुसाफिर से कह सकता है, जैसे सहाबियात ने कहा था, उम्मे दर्दा ने कहा था, वो हज को जा रहे हैं, उनसे दुआ के लिए कहा था, तो मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। इस एतबार से आदमी किसी से कह सकता है, मकामी से भी कह सकता है, कोई मसला इसमें नहीं है। तो ये इस बारे में तहकीक है, और कुछ बातें सिलसिले में हैं इंशाअल्लाह, उसको हम मजीद आगे इसका सिलसिला जारी रखेंगे। जो भी बातें इसमें और कही गई हैं, कब्रों से डायरेक्ट मांगना या इस तरह की जो भी बातें हैं, उसको भी हम इंशाअल्लाह अगले दुरुस में लेंगे। ये बात खत्म नहीं हुई है, इसको हम जारी रखेंगे, लेकिन मसला हल हो गया है, इतना काफी है। इनका तरीका अपनाएंगे, किसका तरीका अपनाएंगे, मसला हल हो गया है, लेकिन और जो बातें इस सिलसिले में है, इंशाअल्लाह उन रिवायत का भी जायजा हम लेंगे जो इससे बहुत गिरी हुई रिवायतें हैं, तो इंशाअल्लाह आगे हम देखेंगे। अकुल कौली हादा, अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम।